ओम शांति। दो दिन से आप बहुत सुंदर राजयोग मेडिटेशन के अनुभव भी कर रहे हैं, हर सेशन के पहले लास्ट में कुछ क्षणों के लिए, और मॉर्निंग की भी शिविर चल रही है। आज परमात्मा का परिचय हुआ होगा, आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण भी आपको मेडिटेशन करने में मदद कर रहा है। तो आप जरूर ये आपके मन में संकल्प आ रहा होगा कि ये राजयोग मेडिटेशन जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो हमारी जीवन शैली में हमें लाना है, ये लक्ष्य रखा है आपने, मन में ये जरूर आता होगा। लेकिन साथ में ये भी प्रश्न आता होगा कि बहनें और भाई जो समर्पित यहाँ है, जो सफेद वस्त्र में आप देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा इनके लिए तो बहुत सहज है क्योंकि इनका जीवन ही ईश्वर के कार्य में समर्पित है। लेकिन आप तो जो विशेष, वो भी सेवा का ही कार्य है, जहाँ रक्षा के कार्य में, मिलिट्री फोर्सेस में सीनियर लेवल पर पोजीशंस में हैं, लेकिन आप जो स्थानों पर है वहाँ हमेशा आपके आसपास हलचल है, अस्थिरता है, और उसमें भी बहुत लॉन्ग समय पर आपकी ड्यूटी भी रहती है। तो ये आध्यात्मिकता को जीवन शैली में आपके लाना, कार्य शैली में लाना, या ऐसा योगी जीवन बनाना, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये डिफिकल्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये प्रश्न आपके मन में आते होंगे। नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता में शांति कहा जाता है, सहन शक्ति कहा जाता है, लेकिन जो आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें तो आपको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, पोजिशन है, तो आपको लोगों को करेक्ट करना है, वहाँ के लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत दृढ़ता के निर्णय और कार्य करने हैं। तो कई बार ये थोड़े दोनों चीजें अंतर दिखाई देता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, और फिर आपका कार्य भी ऐसा है जो आप व्यस्त भी बहुत रहते हैं, आपकी पोजिशनिंग भी ऐसी होती है अलग अलग स्थानों पर। तो एक कंटिन्यूटी में ऐसा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, ऐसा योगी जीवन बनाना, क्या ये पॉसिबल है, ये प्रश्न आता है। और अगर इसको जीवन शैली के रूप में हमने बना भी दिया तो इससे मुझे अपने कार्य क्षेत्र पर क्या मदद मिल सकती है, क्या मेरा जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलिट्री में वो मेरे लिए और इसमें मदद मिलेगी, क्या डिफिकल्ट होगा, ये कोई प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो इसलिए हमने आज ये पैनल रखा है जिसका आज का टॉपिक तो आप सेशन का जानते ही हैं कि इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल। तो आप सब बिजी है ना, लेकिन उसमें भी मेडिटेशन को सहज कैसे बनाएं, सहज योगी जीवन। तो उस रूप में हमारे इस पैनल में हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर हरबीर सिंह, जो युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल गैलेंट्री से सुशोभित है, फिर हमारे आदरणीय कैप्टन आयन रजनीश जवारी जी, जो आप एलुमनी है इंडियन नेवल एकेडमी के, और साथ में इस पैनल में हमारे आदरणीय कर्नल सुंदर बिश्त भाई, जो SC इंडियन आर्मी में है। आप तीनों ही हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान के भी विजयी रतन हैं, और मिलिट्री फोर्सेस में भी आप विजयी रहे हैं, आपको बहुत सारे मेडल्स प्राप्त हुए हैं, आपके बहुत बायोडेटास भी हैं जो हम सुनते रहेंगे। लेकिन आप तीनों ही इस आध्यात्मिक मार्ग में कुछ वर्षों से हैं, आपने अपने जीवन को आध्यात्मिकता से संपूर्ण रूप से सुशोभित किया है, और आपके बहुत सारे अनुभव है जो हम चाहेंगे कि आप हम सबके साथ शेयर करें। मैं आदरणीय ब्रिगेडियर हरवीर जी से पहले निवेदन करूंगी, आप जो हैं, आपने युद्ध सेवा मेडल आपको अवार्ड किया गया था टेररिज्म ऑपरेशंस कश्मीर के लिए, आपको सेना मेडल गैलेंट्री भी मिला जो आपने कारगिल वॉर के समय पर योगदान दिया, आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत बार डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए अवार्ड किया है, आप कमीशन है 1990 में इन्फेंट्री में सिख एलआई रेजिमेंट में, और आपके टेन्योर में सियाचिन में आपने सर्व किया है, वहाँ इंसर्जेंसी एरियाज में जम्मू और कश्मीर और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में आप टीम लीडर रहे हैं मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन सदर्न सुदान। तो आपके बहुत सारे विशेष अनुभव हैं। मैं चाहूंगी कि आपको इस आध्यात्मिक मार्ग में जब आपने प्रवेश किया और आपको ये राजयोग मेडिटेशन का परिचय मिला और आपने योग अभ्यास शुरू किया, उसके बाद जो आप ये जो योगदान आप दे रहे हैं मिलिट्री में, उसमें क्या अंतर महसूस किया आपने?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा परिचय प्रीत में बहन जी ने दिया। मेरे को ज्ञान में चलते हुए आज तकरीबन 23 साल 23 इयर्स हो गए हैं। 1996 में मैं काफी एक प्रोफेशनल डिस्टर्बेंस के दौर से गुजर रहा था। वो एज ए कैप्टन यंग एज होती है और आप हर चीज एक आदर्श से करना चाहते हो और सभी के माइंड्स एक जैसे नहीं होते। आपको पता है एक सिस्टम जो फोर्सेस का वो अपने तरीके से चलता है और उसमें मेरे को एडजस्ट करने में काफी दिक्कतें फेस आ रही थी। तो उस टाइम जो काफी क्लासेस थे प्रोफेशनली माय आइडियाज विद द आइडियाज और विद द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, उससे मेरे को काफी एक मानसिक तौर पर बड़ी परेशानी सी मेरे को रहती थी। उस टाइम फिर एक भाई थे जो ज्ञान में काफी टाइम से चलते थे, उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि आपको सही सच्चा जो ज्ञान है लाइफ के हर पहेली का हर समस्या का हल मिलेगा, आप राजयोग मेडिटेशन सीखिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके। एंड पठानकोट में फिर मैं 96 में आई वॉज इनिशिएटेड ये राजयोग मेडिटेशन में। वहां से लेकर आज तक मैं बहुत लंबी जर्नी है, शायद मैं सारा बताऊंगा कितने अजीब अनुभव हुए हैं तो टाइम बहुत चाहिएगा, तो बड़ा संक्षिप्त में आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। वहां सबसे बड़ी एक सीख जो मेरे को ये मिली कि आप डीप विद इन एक पीसफुल सोल हैं और जब भी आप शांति के साथ एक सुप्रीम सोल जो आपको मेडिटेशन का तरीका सिखाएगा यहां पर भी आप अपने लाइट फॉर्म में एक सुप्रीम सोल को साथ लेके चलते हैं तो आपके अंदर एक बड़े ऑटोमेटिकली बड़े पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। उससे आप कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो एनवायरमेंट में वर्क प्लेस पे आप बहुत जल्दी उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं और आप सभी एक ऑर्गेनाइजेशन बाधाओं के बावजूद सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। शुरू में आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है सुपीरियर्स को आपका जो काम करने का तरीका है वो शायद सुबह ना पसंद आए, आफ्टर ऑल आफ्टर सम टाइम एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि यार ये जो व्यक्ति है ये सीधा चलता है, साफ चलता है और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हमेशा लेके चलता है और कैसी भी परिस्थितियों को विचलित नहीं होता है। जब आपके अंदर ये क्वालिटीज आती है ये सब इनका रिस्पेक्ट करते हैं आफ्टर सम टाइम, योर सीनियर्स ऑल्सो रिस्पेक्ट यू फॉर दीज क्वालिटीज बिकॉज आप बिल्कुल एक सीधे रास्ते पर चलते हैं। और जब आप परमात्मा को साथ में लेके चलते हैं, ये मेरा निजी अनुभव है, आपको कुछ भी स्वयं करने की जरूरत नहीं है। मेरे लास्ट 23 इयर्स में काफी जर्नी है कैप्टन से लेकर इस रैंक तक पहुंचने की, बहुत उपलब्धियां बाबा ने करवाई हैं। बट जब मैं बहुत गहरे में जाकर सोचता हूं उसमें मेरा शायद योगदान मेरे को 1% भी नजर नहीं आता है। ये सब ऊपर से टचिंग आती है और हर सिचुएशन जो वर्क प्लेस पे है जहां पर भी है वो आपके साथ ऑटोमेटिकली एक आइडियल तरीके से अनफोल्ड होती रहती है। 3-4 में एग्जाम्पल दूंगा वेरी ब्रीफली। वन वॉज 96 में मैं ज्ञान में आया, 99 में कारगिल वॉर का आप सबको पता है। तो कारगिल वॉर शुरू होने के 2 वीक पहले ही मेरी पोस्टिंग हुई थी लेवर इलाके में, एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वहां पर। और जैसे कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ काफी तुरतुक के इलाके में मैं था तो इंडियन आर्मी को इनिशियली पूरे सेटबैक मिल रहे थे, फेलियर्स ही मिल रहे थे क्योंकि हमको पूरा आइडिया ही नहीं था कि दुश्मन कहां कहां पर आकर कितनी मजबूती के साथ बैठ गया है। और इसका हमको अंदाजा तकरीबन 1 महीने बाद लगा कि ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट का इंट्रूजन नहीं है, एक प्रॉपर इंडियन पाकिस्तान आर्मी ने आकर फ्री फोर्टिफाइड डिफेंसेस अंदर बना लिए हैं। और ये पता चलते चलते हमारी काफी कैजुअलिटीज हो चुकी थी। अराउंड दैट टाइम आई वॉज इंडक्टेड इन टू द वॉर और मेरे साथ एक माउंटेनियर्स की टीम थी जो टास्क मिला था कि हर टीम जो जाती है वो कैजुअलिटी खाती है, तो ऐसी कोई टीम तैयार की जो माउंटेनियर्स हो और डिफिकल्ट क्लिफ के ऊपर चढ़ के टॉप में चढ़ के एनिमी को सरप्राइज करके उस पोस्ट को हासिल करें, ये टैक्टिक्स बनाएगी ना कि आगे वाले रास्ते से जाकर। तो एक पोस्ट थी जहां से सबसे डोमिनेटिंग पोस्ट थी वो तुर्तुक के इलाके में और वहां से अभी तक कोई फायर नहीं आया था, पर लेकिन उस पर चढ़ाई तकरीबन ना के बराबर मुश्किल थी, तकरीबन 80 डिग्री क्लाइम था वो। हमारी टीम को टास्क मिला और वहां पहुंचने में तकरीबन दो दिन आपको चलना था ग्लेशियर के अंदर, 21,000 फीट। तो मेरी टीम एक में एक जेसीओ और 10 जवान जो ऑल सिलेक्ट माउंटेनियर्स थे, हम दो दिन चल के गए। रास्ते में तकरीबन 8-10 पोस्ट थे जो पाकिस्तान के पास थे, वहां से जब हम रिज लाइन के साथ जा रहे थे तो वहां से फायर भी हमारी पार्टी के ऊपर आता था, तो हम रात के टाइम मूवमेंट करते थे। जैसे हम बेस पे पहुंचे, जो मेन पोस्ट था जिस पर हमको कैप्चर करना था कि जिस पर हमने एक पोस्ट बनानी थी, वहां रात को पहुंचे, उस पर डे लाइट था। डे लाइट जैसे हुआ तो चारों तरफ बर्फ है और हमारे ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो गई दोनों, बिकॉज आसपास के जो पोस्ट थे कुर्सी दैट को इस इलाके में इंडियन ट्रूप्स आ चुके हैं। वो फायरिंग जब हुआ तो किसी ने लाइव फायरिंग ओपन में, जहां खुद टारगेट एरिया में आपको टारगेट बनाओ, किसी ने देखा नहीं था पहले, तो पूरी टीम के जो मैं देखाऊंगा जो कहते हैं डर में आपका चेहरा क्या हो जाता है सफेद, वो फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव किया कि डर में वाकई में चेहरा सफेद हो जाता है। आई कुड सी टीम मेंबर्स का चेहरा सफेद है कि आपको छुपने की कोई जगह नहीं है, आप खुद को डिफेंड कर नहीं सकते, आप फायर बैक नहीं कर सकते, वो तो बहुत ऊंचे से फायर आ रहा है। और जब ये आलम था तो तकरीबन दिन निकल गया, फायरिंग होती रही लास्ट लाइट के आसपास। ये जो जवान थे ये एक अलग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में पोस्टिंग में गया था, इनके साथ मेरा पास्ट कोई अफिलिएशन नहीं था, क्योंकि पास्ट अफिलिएशन नहीं था तो वो अलग थे मैं अलग था, और अभी तक हमारा जो इंटीग्रेशन हमारा एक साथ रहने से होता है वो पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। उन सब ने डिसाइड किया ये तो इम्पॉसिबल टास्क है और सुसाइडल टास्क है, यहां से बचने का एक परसेंट भी तरीका नहीं है। राशन हमारा समाप्त हो चुका था, बिकॉज आप टेंट भी साथ लेके गए हो, एम्युनिशन भी साथ लेके गए हो, केरोसिन भी लेके गए हो, तो यू कुड कैरी ओनली लिमिटेड राशन फॉर मे बी वन डे और वन प्लस वन एंड हाफ डेज। तो राशन के लिए हमने लिंक भेजा, दिन में लिंक के ऊपर बहुत फायरिंग है, वो लिंक भी नीचे राशन लेने के लिए उसका वो वापस चले गए खाली हाथ। शाम को इस पार्टी ने डिसीजन लिया कि सब वापस जाएंगे और यहां तो एक प्रेजेंट भी चांस नहीं सक्सेस को हासिल करने का। मेरे अंदर ज्ञान का नॉलेज था उस टाइम पर और ये एक सीमेंटेड फेथ था मेरा कि मौत उसी दिन आएगी जिस दिन लिखी है, उसको आगे पीछे किस इंसान की इस जमीन पर किसी की ताकत नहीं उसको आगे पीछे करने का। तो मैंने एक निश्चय लिया है सर, मैं यहां से नहीं वापस जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। और मेरे को उस टाइम साफ था कि अगर एक जो मेडिटेशन आपको सिखाते हैं वो उस मेडिटेशन में लगातार उसी स्टेट में था कि मेरे को अपनी लाइट, आई कुड सी माई सोल एज अ लाइट वेरी क्लियरली, आई कुड सी द सुप्रीम सोल, आई कुड सी बोथ द लाइट कनेक्टेड एज यू आर बीइंग टॉट इन द मेडिटेशन एंड आई वाज कंप्लीटली फियरलेस। आई कैन शेयर विद यू, मेरे लिए मौत का मीनिंग ही कोई खास नहीं था उस स्टेज के ऊपर। मैंने एक लास्ट लेटर आई रोट टू माई फैमिली दैट ये सिचुएशन है, दिस माई कॉन्शियस डिसीजन और दिस वॉट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट। नहीं तो फैमिली को पता नहीं चलता लास्ट थॉट्स क्या थे, अचानक से हो गया कैसे हो गया, एंड आई पुट दैट लेटर इन माय पॉकेट। रात को मैं अपने टेंट में चला गया, वो अपने टेंट में चला गया, देन देयर वाज अ थॉट। आप सुन पा रहे मेरे को पीछे? ओके, तो उस पार्टी ने शायद सोचा होगा कि इसको हम यहां छोड़ के तो कैसे जाएंगे, देन देयर बी आंसरेबल। तो दे थॉट कि रात को एक बार ट्राई कर ही लेते हैं उस पोस्ट के ऊपर जाने की। तो व्हेन आई वाज इन स्लीप, उनमें से जो पांच बेस्ट माउंटेनियर्स थे वो डन इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस, दे डिसाइडेड दे वेंट अप, ऊपर गए रोप फिक्सिंग करते हुए। और ये इतना मुश्किल थी इसके ऊपर चढ़ाई के ऊपर, उसके दुश्मन ने भी उसके ऊपर कब्जा नहीं किया हुआ था, सिर्फ आसपास वाली जो पोस्ट थी उसमें कब्जा किया हुआ था। तो सुबह 6 बजे वो मेरे पास आए, बोले सर हम ऊपर तक रोप फिक्स करके आ गए हैं और इसके ऊपर एनिमी की प्रेजेंस नहीं है, आसपास जरूर है। और हमको मेन टास्क इसका इसलिए मिला हुआ था क्योंकि इसके ऊपर से अभी तक फायर नहीं आया था, बहुत मुश्किल पहाड़ी थी। तो सुबह फिर रॉ फिक्सिंग हो चुकी थी, हम ऊपर गए, एक जो आर्मी से होंगे वो समझते हैं आरटी का, सबको पता है आर्टिलरी जो गोले गिराती है, एक आरटी ओपी हमारे साथ था। ऊपर पहुंचे तो रास्ते में जो आसपास की पोस्ट ने देखा कि यहां पर इस पोस्ट के ऊपर भी कब्जा अभी इन्होंने नामे ने कर लिया है, तो काफी हमारे ऊपर फायर आया, वो फायर इफेक्टिव नहीं था और वहां पर हमने एक पोस्ट एस्टेब्लिश कर दिया। एस्टेब्लिश करने के बाद वहां पर आरटीओपी लगा दिया गया, आरटीओपी लगाने के बाद फिर आसपास की जो पोस्ट थी दुश्मन के पास उन पर हम आसानी से आर्टिलरी का फायर गिरा सके और वहां से दुश्मन का जो हार का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और इसके बाद ये इंडियन आर्मी की पहली सक्सेस थी तुर्तुक के इलाके में। फिर हमारी टीम को काफी टास्क मिले, बटालिक जुबार पूरे इलाके में, टोलोलिंग इस इलाके में तकरीबन एक महीने तक हमने और ऑपरेट किया। हर ऑपरेशन में सफलता मिली और ये सब हो पाया जब मैं मुड़ के देखता हूं सिर्फ एक जो सुप्रीम सोल है, बाबा है, उसकी ब्लेसिंग से, उसकी डायरेक्शन से, उसकी गाइडेंस से।
उस समय जब आपका संगठन भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था, जो आपने कहा कि सबके चेहरे भी सफेद हो चुके थे और सबने निर्णय लिया कि हमको तो वापस जाना है, उस समय आपके अंदर इतनी दृढ़ता और उस समय उस हलचल के समय आसपास का वातावरण ऐसा, उसमें आप मन की स्थिति को परमात्मा की याद में कैसे रख सके, इसका आधार क्या था?
इसका आधार मेनली राजयोग मेडिटेशन था। और ये आप ये मत समझिए कि शायद मैं सिर्फ कहने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को ये भी शायद मन में एक विचार आ जाता है कि आज सब शायद कहने के लिए बोल रहे होंगे। ये फैक्ट था कि उस टाइम जिंदगी और मौत का ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता। अगर आप मेडिटेशन जो सीखेंगे आपको महसूस होगा कि सोल ही एक्चुअल हमारी एक वास्तविक आइडेंटिटी है, बाकी बॉडी नहीं है एक्चुअली कुछ भी, जब आप बहुत गहराई में जाएंगे। और जब आपको ये पता है कि सोल तो मरती नहीं है, जो गीता में भी लिखा गया, तो आपको वो फेथ होता है सीमेंटेड कि कुछ भी नहीं गलत हो सकता। उस टाइम सिर्फ एक विचार मेरे मन में आया था, बच्चे छोटे थे, यार इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनके मैं नहीं होऊंगा तो। फिर उसका भी आया कि हर सोल भगवान ने यहां भेजी, हर एक का एक रोड मैप है, हर एक का रूट चार्ट है, गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम और भी कोई अनुभव आपसे सुनेंगे। हमारे साथ हमारे आदरणीय भ्राता कैप्टन रजनीश जवारी जी भी यहाँ हैं, और आप वैसे एलुमनी हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में ग्रेजुएट हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में आपको अवार्ड किया गया है प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन से। आप रोल इस समय प्ले कर रहे हैं डायरेक्टर इन सिग्नल इंटेलिजेंस एट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। एकेडमिकली आपके पास बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, वैल्यू एडुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेमोरी डेवलपमेंट, साइको न्यूरोबिक्स, और एमबीए में आपने क्राइसिस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट में एमबीए किया है। हॉबी के रूप में आप सिल्वा माइंड कंट्रोल, बैचलर रेमेडी और एक्यूप्रेशर भी करते हैं। आप भी हमारे बहुत अनुभवी फैकल्टी हैं जो प्रोग्राम्स कराते हैं एम्पावरमेंट पर, पावर ऑफ थॉट पर। आप मेडिटेशन बहुत वर्षों से और 16 इयर्स से अपने परिवार के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है? आप सभी इस समय प्रैक्टिकली इस मिलिट्री में और नेवी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में हैं, करंटली भी हैं। इससे आपका क्या अनुभव रहा है कि मेडिटेशन के बाद, ये राजयोग अभ्यास के बाद क्या अंतर रहा आपके ड्यूटीज डिस्चार्ज में, आपके टीम के साथ संबंधों में?
ओम शांति। मैं अपना अनुभव कहने से पहले एक छोटा सा वृत्तांत शुरू का उससे पहले का आपको बताना चाहूंगा। मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं तीसरी पीढ़ी हूं फौज के अंदर। मेरे दादाजी, उनके बाद पिताजी, वो भी एक संतान थे अपने पिता के, और हम दो भाई, तो हम सब फौज के अंदर ही चलते आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में चले, तो उनके अंदर अनुशासन, वो कठोरपन, उस पर डिगे रहना, अडिग रहना, कितना आ जाता है खून के अंदर। तो कुछ ऐसी ही मेरी भी पालन पोषण में वो चीज रही। तो मुझे कोई कानून से इधर उधर हो तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और जब गुस्सा आता था तो मैं फिर ये नहीं देखता था कि वो इंसान कौन है, और चाहे कहीं पे भी हो उन्हें वहीं करेक्ट करने में तो कई बार उन्हें चोट भी पहुंचती थी दिल से, पर मैं यही समझ के करता था कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं गलत ना हूं और ना मेरी टीम का कोई भी मेंबर अनुशासन ना तोड़े। तो इस प्रकार की मेरी प्रणाली थी। पर जब परमपिता परमात्मा से ये हमें ज्ञान मिला और हम राजयोग में उतरे, तो पूरे परिवार के परिवार उतरे हम, मतलब जो हमारी धर्म पत्नी बच्चे मेरे उस समय छोटे छोटे थे, 3 साल और 8 साल के, तो हम सब एक साथ ही ज्ञान में उतरे और हमने इस चीज का राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया। अब अनुभव तो बहुत है, आप इधर शिविर में आए हैं और शिविर में आने के बाद हमारे ये जो जर्नी है यही नहीं रुक जाती, हमें इसके बाद अपना बेसिक कोर्स जो नियरेस्ट राजयोग सेंटर में होता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, उसे करना होता है और उसके बाद नित्य क्लास होती है जो हमारे को नित्य भोजन देता है। शरीर की पालना तो हम करते ही हैं, इसे न्यूट्रिशन देते हैं, सारे पोषण देते हैं हम, परंतु अपने आप को क्या हम पोषण देते हैं, ये जब समझ में आ गया तो रोज ये ईश्वरीय पाठ हमने पढ़ना शुरू किया। अब इससे जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। अगर आता है तो कैसा आता है, तो अनुभव मेरे बहुत हैं, पर मैं जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमने पहले ये सीखा कि यू हैव टू बी हैविंग ए बैलेंस ऑफ लॉ एंड लव, सबसे पहले ये सीखा हमने, और वो केवल दूसरों के लिए नहीं स्वयं के लिए भी। तो जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं और अनुशासन में अपने आप को रखते हैं उन मर्यादाओं पे जो स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सिखलाते हैं, तो जब आप उस पे चलने लगते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगते हैं। ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको लोगों ने कैसे देखा है, तो मैंने ये सीख लिया कि टू अबाइड एंड इम्प्लीमेंट लॉ रूल, मुझे रूड नहीं होना है, फर्म होना है, और फर्मनेस प्यार से भी स्नेह से भी व्यक्त की जा सकती है। तो ये एक मेरे जीवन में परिवर्तन आया। फिर हर स्थिति के अंदर, क्योंकि जब हम अपने इस शरीर के बोध में रहते हैं कि मैं ये हूं, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, तो मुझ में एक अहंकार होता है और अहंकार आपको बहुत जल्दी गिराता भी है। तो सम रहना, इस विद्यालय में आके हमने सीखा कि हम हर स्थिति में सम कैसे रहें और संबंध कैसे बनाएं। तो हम जब संबंध बनाना सीखते हैं तो होता क्या है, मैं अपने आप को भी मान देता हूं और आपको भी देता हूं। तो पिता ने हमें इधर सिखाया, इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब स्व को मान देना। अगर मैंने स्वयं को ही मान नहीं दिया तो मैं आपको मान नहीं दे सकता। तो पिता ने इधर मुझे सिखाया कि मैं स्वयं को कैसे मान दूं। अब ये सब जो हम सीखते गए, और अचल अडोल रहना मतलब कि कुछ भी चीज, हर चीज आपके कर्म अनुसार ही आपको रिजल्ट दे रही है, तो आप हर जगह स्थिर रहते हैं, किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालते, क्योंकि उसके जिम्मेवार कौन है, आप खुद हैं। इसको अगर इस तरीके से समझें कि कहीं आग जलती हुई देख रहे हैं और मैं उसमें अपना हाथ दे दूं, तो क्या मैं कहूंगा परमात्मा ने मुझे उसका पनिशमेंट दिया, हाथ जलाया, पनिशमेंट तो मैंने खुद ही लिया ना। तो ये चीज समझ में आने लगती है। तो ये जब बुद्धि जितनी स्पष्ट खुलने लगती है और नित्य आप इसका पाठ करते हैं और नित्य योग अभ्यास करते हैं, मतलब पिता के साथ याद में रहते हैं कि मैं कौन मेरा कौन, उससे अनुभव ऐसे हुए कि आप कई जगह आधारशिला बन जाते हैं। तो नौसेना के अंदर मुझे कई अनुभव हैं, मैंने ऑपरेशंस भी किए हैं, श्रीलंका के आप LTT से लेकर के और जो बीच में आए वो किए हैं, मैंने प्लानिंग की है, मैंने ट्रेनिंग में अनुभव है मेरा टैक्टिकल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट उसमें भी गए हैं हम, और अब आज की तारीख में सिग्नल इंटेलिजेंस के अंदर पद पे बैठे हुए हैं हम। तो इनके अंदर मुझ में क्या वो ऐसे अनुभव हुए जिससे कि हम किसी के लिए प्रेरणा बने, तो वो उनमें से मैं कुछ आपके सामने शेयर करूंगा। एक समय की बात है, ना मैं जहाज का नाम लूंगा ना जगह का नाम लूंगा, हम आ रहे थे और समुद्र तो बहुत ही विशाल है, जो नौसेना के इधर मेरे साथी होंगे वो इसे बहुत ही स्पष्ट समझ रहे होंगे, और आप सब जो है देखते हैं कि सागर तो बहुत ही विशाल है, वहां एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। तो एक्सीडेंट ऐसे होता है कि एक जहाज जब चल रहा होता है एक अपने स्पीड के ऊपर, तो जब उसे रोकना होता है रोड पे, तो आपने ब्रेक लगाई गाड़ी वहीं रुक जाएगी, पर जहाज के अलग अलग टर्निंग पैरामीटर होते हैं और रुकने के पैरामीटर होते हैं, क्योंकि पानी है ना, आप अगर उसे चलाएंगे तो कोई जहाज कम से कम 1 मील पे जाके रुकेगा और कोई जहाज 5 मील के ऊपर रुकेगा। तो जिस जहाज में मैं उस समय था उसे 5 मील लगते थे,
और उसे अगर आपको दाहिने से बाएं हाथ मोड़ना है या बाएं से दाएं हाथ मोड़ना है तो आपको कम से कम 10 मिनट चाहिए। पर जैसे ही वो मुड़ने लगेगा तो फिर बहुत तेजी से मुड़ेगा, फिर उसके मुड़ने को आपको रोकना एक काम है। तो हम एक जगह से निकल रहे थे और वहां पे शिपिंग व्यवस्था बहुत ही गहरी है और सब अपने लेन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, पर क्या होता है कि मैकेनिकल फेरियल किसी भी जहाज में हो सकता है। तो जो जहाज हमारे सामने से आ रहा था उसका एक मैकेनिकल फेलियर हो गया, और जब वो फेलियर हुआ और उसने आके हमें टक्कर मार दी, हमारी जहाज टूट गई एक तरफ से और पानी भरने लगा उसमें। और वो रात के करीब 2-2.5 बज रहे होंगे, हम भी अपने रूम में उस समय सैया कक्ष पे थे। तो जैसे ही वो हुआ तो जो हमारा अधिकारी ड्यूटी पे होता उसने एक अनाउंसमेंट किया, ब्रेस ब्रेस ब्रेस। तो क्योंकि मेरा उस समय मैं जिस पद पे था तो मुझे एक रोल था, उसको हम कहते हैं एक्शन ऑफिसर ऑफ द वॉच, तो वो मुझे इमीडिएटली टेक ओवर करना होता है। और जो हमारे कमान अधिकारी थे वो भी ब्रिज में भाग के आए, हम दोनों जैसे वस्त्र में थे वैसे ही ऊपर भाग के आए और हमने ब्रिज को संभाला। तो जो कमान अधिकारी थे, क्योंकि जब इतना बड़ा एक्सीडेंट है और आपकी जहाज एकदम ऐसे मुड़ने लग रही है, जैसे बाकी सेना में क्या होता है किसी भी हमारे उसमें कि अगर गोली लगती है एक को एक की गोली लग रही है, और इधर नौसेना में अगर एक को गोली लग रही है तो सारे जाएंगे। और उस समय मेरी जहाज के अंदर हम 550 मेरे जवान थे और हम 10 ऑफिसर थे, तो इन सबका जीवन दांव पे लगा हुआ है। तो मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो अपने आप को संयम बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। तो उनका आदेश मैं समझ रहा हूं पर उनके आवाज में वो कंपन, अस्थिरता, एक ऑर्डर दे रहे हैं फिर सेकंड में दूसरा ऑर्डर बदल रहे हैं। परंतु क्योंकि पिता के साथ आप जुड़े हैं, आप स्थिर रहते हैं कि संयम मेरा साथी कौन, क्योंकि विश्वास आपको अपने ऊपर नहीं है, उस पर है कि मेरा साथी कौन। और उस विश्वास के साथ जब कमांडिंग ऑफिसर मुझे कोई भी ऑर्डर देते थे तो मैं उस समय वो कौन ऑर्डर भी, मतलब जहाज को कैसे संभालना, मोड़ना इधर उधर, इंजन कौन सी इंजन मुझे कहां बंद करनी है, कैसे बंद करनी है, वो सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए मैंने और बहुत ही स्थिरता के साथ उसे हम संभालने लगे। अब जहाज जब एक तरफ मुड़ने लगती है तो जहाज में कुछ खाली स्थान होते हैं, टैंक जो खाली होते हैं, अब किस टैंक को भरना है। जो मेरे नीचे इंजीनियरिंग अधिकारी हैं वो भी बहुत संयम के साथ वो बोल रहे हैं, सर अब इस टैंक को हम भरते हैं इसके लिए, पर निर्णय लेना ऊपर से है। तो जब निर्णय ऊपर से लेने हैं तो जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं पहले पीछे की टैंक को या आगे की टैंक को, किसको भरा जाए। तो उसमें उनका सहयोग दिया, क्योंकि मेरा सहयोग साथी कौन, एक पिता। वो जैसे जैसे उनके साथ जुड़ते हुए जो संकल्प आते गए वैसे हम ऑर्डर देते रहे, और एकदम संयम शांत आवाज के साथ, ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में आप आ गए, घबराहट में कोई हुक्म दे रहे हैं, बहुत शांति के साथ। जिसका असर ये हुआ जहाज के अंदर जब जहाज सीधी रख ली गई और उसे हम बहुत धीरे धीरे चला के लेके आए, करीब जैसे ये मान लीजिए कि 5 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर लेकर आए, तो जब वो सीधी हो गई जहाज और सूरज निकल आया, जब सारी स्थिति दिख रही है, वो दूसरी जहाज को खींचा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, तो तब सबने यही कहा कि सर आप उस समय ऐसे शांत और एकदम संयम के साथ कैसे आदेश पास कर रहे थे, क्योंकि पीछे से और भी आवाजें आ रही थी और सब हलचल में थे, हम भी नीचे हलचल में थे, परंतु आपकी आवाज सुन करके हम भी स्थिर हो गए। तो माना जब आप स्थिर हो, स्थिर आप क्यों हो, क्योंकि परमात्मा, परमात्म बल, उसकी छत्र छाया आपके साथ है, उसका साथ आपकी स्मृति के अंदर है, तो आप स्थिर हैं। एक ऐसा अनुभव उसके बाद हमें मिला, एक अनुभव कि हमें ऐसी जगह डाला गया जहां पे हमें नौसेना के अंदर एक एकाग्र करना था, तो उसे फ्लोर से हमें इलेक्ट्रॉनिक करना था, डिजिटाइजेशन करना था। तो जहां पे हर जगह सारे सेना के अंदर, चाहे कोई भी सशस्त्र बल हो या अर्ध सशस्त्र बल हो या पुलिस सेना हो, हर चीज पहले आप पेपर पे करते हैं, फिर उसे फ्लोर डायग्राम पे करते हैं, फिर उसे आप प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जाके क्षेत्र में जाके उसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो जहां पे मुझे वो पोस्टिंग सेना वहां मिली हुई थी, तो अब सबने सोचा कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा है, इसे कैसे किया जाए। तो आप क्योंकि उसके साथ हैं, तो जो सुबह हम बैठते हैं अमृत वेला जिसे हम कहते हैं, पिता के साथ बैठते हैं, तो पिता से बातें कर रहे हैं हम कि पिता ऐसे ऐसे इसको कैसे किया जाए। तो जो खर्चा करोड़ों में होना था वो कुछ 3-1 लाख में हो गया, करोड़ों का खर्चा 3 लाख में हो गया। वो प्रेरणा कैसे आई? क्योंकि शुद्ध पिता है, पवित्रता का सागर वो है, वो आपकी बुद्धि खोल के आपको निर्णय लेना, सही संकल्प लाना और आपको प्लानिंग के अंदर बहुत मदद करता है। तो हमने इस प्रकार किया कि वो केवल उस गेम तक सीमित नहीं रहा, उसके बाद हमारी पूरी नौसेना नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हो गई। अमेरिका ने हमसे इतने पैसे मांगे कि इसको आपको एनक्रिप्शन करना है तो आपको मैं ये बेचूंगा, और वो कई 100 करोड़ का था। परंतु हम जो 3 साथी काम कर रहे थे, आपस में जब विचार विमर्श कर रहे थे, तो ऐसा एक बात निकली जो मेरे को भी नहीं पता था, मुख से जो निकली जब उस पर जो विचार आ रहा था, तो वो बहुत अच्छे से छू गई और हमने वो फ्री में कर दिया। जिसके कई 100 करोड़ देने थे वो हमने फ्री में कर दिया। हुआ क्यों वो? क्योंकि आपकी परखने की शक्ति और समझने की शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होता है। फिर जब हम रिक्रूटमेंट में आए, रिक्रूटमेंट बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं कि करप्शन है, ये है, वो है। तो जिन मेरे जो अधिकारी बॉस थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, क्योंकि संयोगवश वो भी बाबा के बच्चे, वो भी इस विद्यालय से जुड़े हुए, तो 1 और 1 11 बनते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? मैंने कहा पक्का सर। बोले लक्ष्य हमारा यह है कि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाए, मुझ पे और तुम पर कोई भी और आने वाली पीढ़ी में कोई भी आप पर उंगली ना उठा पाए। हमने कहा सर ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, जिस दिन ये हो जाए मैं यहां से हटना चाहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। और जब हमने उसकी प्लानिंग की, आज की तारीख में नौसेना की भर्ती केवल बटनों के ऊपर हो जाती है। मतलब आप एप्लीकेशन भरेंगे, आपकी स्थिति क्या है, आपका एप्लीकेशन किस स्थिति के अंदर है, और बाकी सारी प्रणाली एक दिन में हम खत्म कर देते हैं। आपका रिटन एग्जाम, आपका मतलब फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट एक दिन में हम खत्म कर देते हैं, और एकदम सबके सामने, कुछ भी चीज छुपी नहीं है। तो उससे विश्वास बढ़ा। जब ये कर्म हो गया तो क्योंकि आपके और भी साथी लोग आपको जानते हैं, तो एक ऐसी जगह गए, वहां पे हमें कुछ करना था, मैं उसे ओपन पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता, परंतु उसका एक निचोड़ आपको ये दूंगा मैं कि कुछ ऐसी घटना हुई जिसके लिए बहुत सारी अफवाहें उड़ी और उंगली उठनी, ये रिक्रूटमेंट से बाहर की बात है। तो जब वो बातें हो रही थी तो उनमें कहा कि एक उनमें उस टीम के अंदर एक कैप्टन छावड़ी भी है जो लीडर है। बोले वो लीडर है? तो फिर ये सारी अफवाहें हैं। और एक ही रीडिंग आई जो हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंटेलिजेंस होती है कि ये ऐसा पूरा, इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत है। फिर उसकी 6 महीने और इंक्वायरी चली और इंक्वायरी में यही निकल के आया कि सब कुछ साफ है। तो मतलब आप साफ रहेंगे, आपके वाइब्रेशन, आपकी टीम वो भी हर समय शुद्ध और पवित्र रहेगी और पारदर्शिता हो जाती है। ये हमने यही पिता से आकर के सीखा, इस ज्ञान को इसी प्रकार उतारा हमने। अब आई बात संबंध की, क्योंकि आप के साथ आपके जूनियर भी हैं, साथी भी हैं और सीनियर भी हैं, तो आप इनके साथ कैसे एक समीकरण बनाएंगे? तो जब हमने जिस इंस्टीट्यूशन में मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो मेरी पूरी टीम परेशान थी, क्योंकि मेरे बॉस बहुत ही गुसेल, बहुत ही प्रेशर देने वाले, और खुद उनके अंदर इतने विचार संकल्प चलते हैं कि वो एक बार के अंदर, जब जैसे कहिए 1 मिनट में 100 काम कर सकते हो, तो उनकी अपेक्षा यह कि मैं 1000 काम कर दूं। काम सारे कर सकते हैं आप, परंतु जरूरत क्या है? सहनशीलता की, समाने की, समेटने की, और फिर उस पर निर्णय लेने की। ये किसके पास हो सकता है? जिसके पास स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो हम उधर आधार बनकर के पहुंचे। टीम मेरी बहुत परेशान, कह रहे हैं सर हम तो इधर से छोड़ना चाहेंगे, रिजाइन करना चाहेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं आके ज्वाइन किया हूं, मुझे 3 महीने तो दीजिए आप, 3 महीने के बाद आप जो करेंगे मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और हुआ ऐसे कि 3 महीने में मेरी टीम मेरे साथ हो गई, मेरा बॉस शांत स्थिर हो गया, और वो जिस किसी की सुनता नहीं था वो आज सुनने लगा, मेरी भी और टीम की भी। ये फायदा हुआ मुझे राजयोग से। पर इसका सिंपल युक्ति क्या थी, मतलब तरीका क्या था, कि जो पिता ने कहा ना स्वमान में रहना, तो जैसे ही मैं दफ्तर में पहुंचता था तो पहला एक वाइब्रेशन क्रिएट करता था कि सब इधर जो हैं सब शांत चित आत्माएं हैं, सब सक्षम हैं और सब एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन फैला है उसका असर महीने भर में देखने में आया और आज की तारीख में उसको धन्यवाद देते हुए परमपिता परमात्मा को कि स्थिति इतनी अच्छी है कि मैं आपके बीच आ सका हूं और मेरी टीम अभी भी स्नेह के साथ काम कर रही है। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद कैप्टन रजनीश जी, आपके बहुत सुंदर अनुभव थे। विशेष जो आपने अनुभव समुद्र के बीच में जब एक्सीडेंट के समय पर आपकी स्थिरता थी, तो वो स्थिरता हम कैसे, कितने वर्ष लगेंगे हमें मेडिटेशन के अभ्यास के बाद, क्या बहुत वर्ष के बाद ही ऐसी स्थिरता होगी या हम इसको सहज अनुभव कर सकते हैं?
ये स्थिरता बहुत ही सहज है और ज्यादा समय आपको नहीं लगता, क्योंकि आपको अवेयरनेस आनी है, कॉन्शियसनेस होनी है। तो जब पिता आपको पढ़ाते हैं और हम सब जितने वर्दी में, हम में अनुशासन तो कूट कूट के भरा हुआ है, हमें बस उस प्रिंसिपल पे चलना है। जैसे बच्चा अगर मेहनत करता है या थोड़ी भी अपना अभ्यास करता है उठ के चलने के लिए, तो आप बड़े होने के नाते अपनी उंगली दे देते हैं। तो हमारा कदम एक, मतलब बच्चे का कदम एक, और बाप माँ दूर से भाग के आते हैं ना कि बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है, इसे सहारा दिया जाए। तो पिता लाखों कदम हमारे पास भाग के आता है और मैं ये कहूंगा कि मेरा मैक्सिमम अभ्यास उस समय का होगा 6 से 7 महीने का, उससे ज्यादा नहीं था। मैं नियम फॉलो करता था, जो मर्यादाएं पिता ने हमारे लिए ले की हुई हैं उस पर चलता हूं और उस पर कभी भी दो राय रखता ही नहीं हूं। ये कह दिया मतलब ये करना है, और उसमें हम सब निपुण है और सक्षम है, आप सब भी कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पैनल में हमारे आदरणीय अमराता कर्नल सुंदर विश्व जी, शौर्य चक्र इंडियन आर्मी, आप कमीशन है इंडियन आर्मी में जून 1997, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपने MBA पर्सनल में सिम्बायोसिस पुणे में किया है, आपने MA डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में किया है, MSc काउंसलिंग और स्पिरिचुअल हेल्थ में किया है, आपने विशेष कार्य विशेष अपॉइंटमेंट्स आर्मी में आपने निभाए हैं, 3 टेन्योर्स आपने जम्मू और कश्मीर में, 2 टेन्योर्स असम में, 1 टेन्योर में आप विशेष नक्सल अफेक्टेड एरिया में छत्तीसगढ़ में थे, आपने एक इंटेलिजेंस यूनिट नेबरिंग पाकिस्तान एट रजौरी में अर्थात जम्मू एंड कश्मीर में भी कमांड किया है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन 2007, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कमेंडेशन 2007, गैलेंट्री अवार्ड मेंशन इन डिस्पैचेस इन 2008, गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र बाय प्रेसिडेंट इन 2009, आप वर्तमान समय में डायरेक्टर ECHS पुणे में हैं, आप इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से 2009 में जुड़े हैं, आप बहुत एक्टिव लेवल पर सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में जुड़े हैं। तो सुंदर भाई, मैं रिस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर, मैं आपसे भी आपके अनुभव जानना चाहूंगी।
ओम शांति। आखिरी में बोलने का कुछ फायदा होता है, एक तो आप चुरा सकते हो कुछ पॉइंट्स, दो स्पीकर ने क्या कहा है। डिबेट में अमूमन वही जीतता है जो लास्ट में, यहां जीतने हारने वाली बात नहीं है, लेकिन आप कई चीजें कॉपी कर सकते हो। दूसरा फायदा यह है कि जो थोड़े बहुत सो रहे हैं वो अभी तक उठ गए हैं, तो अब मुझे आप ध्यान से सुन सकते हैं। तो मैंने जो भाई साहब लोगों से कुछ चुराया है उसको मैं अपने एक्सपीरियंस जो है 3 भाग में बताऊंगा। एक तो पहले ये ज्ञान से पहले मैं क्या था, ज्ञान में आने के बाद में मेरा कुछ अनुभव, और आप ये 3 या 4 दिन में जो भी आप सीख के जा रहे हैं आप क्या लेके जाएंगे यहां से। हमारे एक्सपीरियंस ये कहता है, हम भी आप ही की तरह इस तरफ बैठते थे, आज हम इधर बैठे हैं, आप भी हो सकता है कुछ सालों के बाद आप भी इधर बैठे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जैसे रजनीश भाई ने बताया कि उनको एक प्रॉब्लम था गुस्सा, तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं सारे अवगुणों का भंडार था, मेरे में ऐसा कोई भी अवगुण नहीं था, सब अवगुण थे मेरे में। और शायद फाउंडेशन ले हो रहा था मुझे इस परमात्मा के ज्ञान के बारे में जानना। तो मैं आसाम में पोस्टेड था, 2007 से, और काफी कामयाबी मिल रही थी वहां पर। आप लोगों को पता है वहां उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम वो काफी उस समय एक्टिव था और हम काफी उल्फा को पकड़ रहे थे, मार रहे थे, तो उसके कारण मुझे 3 अवार्ड मिले थे और बाद में मुझे 2007 में शौर्य चक्र मिला। ये शौर्य चक्र मिलने के बाद में आज के तारीख में मैं उसको देह अभिमान कहूंगा, लेकिन उस समय वो घमंड था और ये घमंड मुझसे कई कार्य ऐसे करवा रहा था जिससे कि मैं लोगों से दूरी बनाने जा रहा था। और ये था दूरी इसलिए बन रही थी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो थे वो हाई हो गए थे अपने जूनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सीनियर से। ये चाहता था कि ये मेरी रिस्पेक्ट हो, लेकिन जो इस दूरी के कारण जो मैं एक डिप्रेशन लेवल पे चला गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई और शॉर्ट टेन्योर के बाद में हम कुछ ऑफिसर्स को सिलेक्ट करके छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया में एक सब एरिया को रेस करने के लिए भेज दिया गया। तो वहां पर क्योंकि ये चलता जा रहा था, ये अब तक मुझे 1 साल हो गए थे, और ये जो डिप्रेशन था उस वजह से मैं नींद, मेरी नींद पूरी होती थी और मैं कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे और मैं सोचता रहता था। और इसके कारण मैं टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स, दिव्या चैनल, आस्था चैनल, ये सब देखता था कि कहीं मुझे निवारण मिले इसका। और उसी दौरान अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज का प्रोग्राम चलता था जिसमें हमारी शिवानी बहन आप सब जानते होंगे और कनुप्रिया, इनके डिबेट होते थे। तो उनके डिबेट सुन के मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे लिए ही बना है और शायद इसी वजह से जो है ये सुनने के लिए मैं जब मर्जी मैं तब, जैसे वो कहते थे कि अभी ये नेक्स्ट प्रोग्राम इतने बजे होगा तो मैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए उठ जाता था। और जब आप 2:30 बजे उठते हो और पूरे दिन भर नहीं सोते हो तो एक मेंटल डिस्टर्बेंस, और जब आप ये स्टेज से गुजरते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि आप में क्या चल रहा है। तो मैंने, और एक्सीडेंटली ऑफिस में बैठे बैठे मैंने पता करने की कोशिश की ये शिवानी बहन है कौन, तो पता चला ऐसा कुछ ब्रह्म कुमारीज है। फिर मैंने पता किया ब्रह्म कुमारीज क्या रायपुर में है, तो रायपुर से सेंटर का पता चला। सेंटर में मैं जब गया वहां पर, जो मैंने 7 दिन का कोर्स किया, 7 दिन के कोर्स करने के बाद मैं जो फर्स्ट चीज मैंने वो अनुभव किया, जो मेरे में एक चिंता या जो 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 आज मैं डिप्रेशन कहूंगा लेकिन वो उस समय चिंता, वो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। जो शौर्य चक्र मिलने के दौरान एक हमने घर में पार्टी दी थी, मेरे पिताजी भी यहीं बैठे हुए हैं, वो भी उसके प्रीवी हैं, तो मैंने उस पार्टी के दौरान किसी ने मुझे कुछ मेरे प्रोफेशन के बारे में और उसके बारे में शौर्य चक्र के बारे में कुछ उल्टा बोला, तो मैंने पूरी पार्टी में जो है उसको खींच के दे दिया था। तो ये सब चीज मैंने बाद में रियलाइज किया कि ये कोर्स करने के बाद में कि ये मैं क्या करता था, ये मेरे से क्या हुआ। और हमारे विषय सबसे बड़ा है वो है क्षमा। तो मैंने जो सबसे पहली चीज की है वो ये किया कि जिससे भी मैंने बैर रखा था, मैंने दूरी बना के रखी थी, उन सबको जाके पहले मैंने सॉरी कहा। और इसको करने के बाद में मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस करता था। ये तो रहा मेरा किस तरह से मैं ज्ञान में आया और किस तरह से मैंने अपने आप को चेंज किया। आज मैं जब अपने आप को फिर पीछे मुड़ के देखता हूं तो कि मैं सोचता हूं कि मैं क्यों करता था ऐसा और ये क्यों होता था मेरे से। एज कमांडिंग ऑफिसर मैं राजौरी में पोस्टेड था, मैं अपना अनुभव अभी सुनाऊंगा। वहां पर कुछ एक कारणवश, क्योंकि मैं एक इंटेलिजेंस यूनिट कमांड कर रहा था, तो एज अ सीओ जो कोई अच्छा होता है या गलत होता है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो एज अ कमांडिंग ऑफिसर हमारे यूनिट में हमारे किसी कंपनी कमांडर का कोई सोर्स कॉम्प्रोमाइज हो गया था, और सोर्स कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि आपका कैरियर सील, या हो सकता है आपको आपका कोर्ट मार्शल भी हो। तो मेरे जो सीनियर थे, जैसे प्रीवियस भाई ने बताया कि मेरे जो सीनियर थे वो भी इसी तरह से, वो बिना कोई भी उनका स्टेटमेंट गाली से ही शुरू होता था और वो बहुत तेज थे वो। तो मुझे दिल्ली बुलाया गया एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और वो एक्सप्लेनेशन इतना सफाई था, इतना मेरे लिए था कि अभी मेरा सब कुछ खत्म है। तो एनीवे हम जब ज्ञान में आ जाते हैं तो हम ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन फिर भी एक मन के अंदर एक ये भाव रहता है कि किसके गलती की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है। तो एनीवे जब मैं वहां जाने से पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसे हम मेडिटेशन में आप परमात्मा से बात करते हैं और आप देखोगे कि ये एक अभी तक शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि परमात्मा भी आपसे बात करता है। और जब परमात्मा आपसे बात करता है तो आपको एक मैसेज मिलता है, वो मैसेज चाहे आपके अंदर एक संकल्प आए या आपके अंदर एक फीलिंग आए या आप जब ये मुरली पढ़ते हो तो उसमें कोई ऐसे वाक्य आ जाता है जिससे कि आपको एक मैसेज मिल जाता है कि आपको करना क्या है। तो वो एक चीज था। और क्योंकि वो ऑफेंस बड़ा ग्रेव था तो मैंने यहां मधुबन में भी हमारे एक दीपक भाई हैं जो हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग चलाते हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि थोड़ा मेडिटेशन करो। इफ कमांडर शिव रिकॉल्स, मैंने इनको भी फोन किया कि सर थोड़ा सा मेरे लिए कुछ करो, क्योंकि वो मिक्स ऑफ जो रिपोर्ट गई थी वो मिक्स ऑफ बहुत सारे इंसिडेंट्स थे। तो इन लोगों के मेडिटेशन की वजह से, मेरे मेडिटेशन की वजह से जब मैं गया तो जो उनके पीए होते हैं उन्होंने कहा कि साहब आज तो कमांडर साहब बहुत गुस्से में है। तो हम जैसे मौका देखते हैं ना, आप लोग भी शायद मौका देखते हो कि बॉस का मूड कैसा है, तो तब आप अंदर एंटर करते हो। तो मुझे तो एक तो ऑफेंस भी ग्रेव था प्लस उस समय बॉस का मूड भी बहुत खराब था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने सोचा अभी तो बौछार होगी और मेरे से जो है रिटर्न में एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। तो मैं अंदर गया तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित, और मैं बाहर आके सोचता ये हुआ क्या। तो वो मुझे सिर्फ इतना उन्होंने कहा, मेरा नाम वहां बिस्ट बोलते हैं, बिस्ट क्या हुआ? तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन बना के गया था मैंने बताया कि सर ऐसा 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 हुआ। अच्छा ठीक है, एक रिटर्न रिपोर्ट दे देना, ठीक है जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी एक रिटर्न रिपोर्ट दे देना। और मैं जब बाहर आया तो मैं सोचता रह गया कि ये अचंभा क्या हुआ। तो ये एक चमत्कार मेडिटेशन का, या आपके परमात्मा आपके जो मैसेज आपको छोड़ते हैं और आपको जो रेसिप्रोकेट आपका होता है, तो ये जो मैंने एक देखा इस ज्ञान में, बहुत सारे अनुभव हैं, अनुभव की भरमार है, अगर हम बोलना चाहें तो पूरा दिन ले सकते हैं। जो आप अभी यहां से लेके जाएंगे वो ये है कि आप लोग यहां 3-4 दिन में इस बहुत शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये फीलिंग्स बहुत टेम्पररी है। वो टेम्पररी फीलिंग सिर्फ आपके रेलवे स्टेशन तक है। एक बार आप गाड़ी में बैठोगे आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ेगा। कई लोग होंगे जो आप लोगों को कहेंगे कि जो आप अभी तक कर रहे थे उससे क्या आप संतुष्ट नहीं है, आपको ये सब चीज में पढ़ने की क्या जरूरत है। कई सारे लोग आपको अलग अलग बातें बोलेंगे। तो देखिए हम भी, आप मान सकते हैं अभी जैसे ब्रिगेडियर हरबीर हैं चाहे रजनीश भाई, हम लोगों को, मैं आप लोग डिफेंस फोर्सेस में देखा है आप लोग ने कि हम लोगों के लिए कहते हैं कि अच्छा फौज में हो गए ये नहीं करता है, मीट नहीं खाता है, मच्छी नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है। तो वो हमारे लिए बहुत छोटी चीज हो गई है। जो शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए थे तो हम भी सोचते थे हाँ यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, मतलब आपके सोशल जो गैदरिंग्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन आप ये किसके लिए कर रहे हैं? ये आप अपने लिए कर रहे हैं। तो जब आप यहां से जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, और उस प्रभाव के कारण हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है आए, आप लोग में से कई लोग जो है परमात्मा को याद करें। एक चीज याद रखना, परमात्मा ने हमें इस यज्ञ में जो है इस पूरे 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान यानी नॉलेज। जो मैं पहले भगवत गीता को सिर्फ सर से लगाता था, मैं कुछ नहीं करता था, भगवत गीता मुझे पता भी नहीं था था क्या, वो मैं मंदिर में रखता था, उसको सर पे लगाता था, नीचे रख देता था, बस यही करता था। लेकिन ज्ञान में आने के बाद में मैंने जानना चाहा कि भगवत गीता में परमात्मा बोलते क्या है, कुरान बाइबल में भगवान बोलना क्या चाहते हैं। तो ये आपकी नॉलेज, आप नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं। योग यानी मेडिटेशन, आप जैसे जब भी आप डिस्चार्ज हो जाएं, जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, आप भी जब डिस्चार्ज हो जाओ आप उससे कनेक्ट हो जाओ। धारणा यानी कुछ लॉ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको हम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और सेवा, सेवा के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि जब मैं रजौरी में पोस्टेड था, वहां पर कुछ एक कारण से वाइब्रेशंस ठीक नहीं थे। तो मैं एक बार ऐसे ही बैठा था वो सेंटर में, और उस सेंटर में मैं सोचता रहा कि मैं यहां क्यों आया, क्योंकि मेरा वहां पुरुषार्थ, समझते हैं पुरुषार्थ मतलब आप कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी रजौरी आया है उन्होंने वो सेंटर देखा था। तो मैं सोचता रहा कि मैं परमात्मा को उससे बात कर रहा हूं कि परमात्मा आपने मुझे क्यों भेज दिया यहां पर, मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा हूं। मुझे क्यों भेजा आपने? तो उस समय ठंड का समय था, तो आप हाथ इधर इधर हिलाते थे, तो मेरा हाथ दीवाल में लग गया और दीवाल से इतना बड़ा चूना नीचे गिर गया। तो मुझे परमात्मा का मैसेज मिल गया कि बच्चे, मैंने आपको यहां पर निमित्त बना के भेजा है इस सेंटर का सुधार करने के लिए। तो इस तरह से आपको मैसेज मिलता है तो वो सेवा में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से आप ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में आप कोई भी सब्जेक्ट को फॉलो करो, उस सब्जेक्ट को लेके चलो और आप लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता कर्नल सुंदर जी। लेकिन आप जो ईश्वरीय पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई माना रेगुलर स्टडी, रोज का पढ़ना, तो ये रेगुलर स्टडी आपके बिजी लाइफ में, क्योंकि आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, आपको अचानक कहीं ना कहीं सीनियर्स के पास मिलने जाना पड़ता है, हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता है, तो ये रेगुलर स्टडी आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? आपकी दिनचर्या आपने कैसे सेट की है जो इसके लिए आप समय निकाल पाते हैं?
देखिए रजनीश भाई ने आपको एक चीज कहा कि जैसे आपके शरीर के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आपके आगे फर्दर डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में हमें एक यहां पर रोज मुरली चलती है, वो मुरली हमें लिखित आती है। आजकल तो बहुत सारे सुविधाएं हो गए हैं, जैसे व्हाट्सअप और इसमें भी आता है। तो एक चीज मैंने जो डिसाइड किया है वो है, मैं जैसा खाना नहीं भूलता वैसे मैं मुरली कभी नहीं भूलूंगा। तो हम लोग अपने घर में रोज शाम के समय, क्योंकि हर एक जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त रहता है, तो अलग अलग टाइम मुकरर किया गया है, अच्छा टाइम जो भी है जिसमें आप परमात्मा से योग अच्छा लगता है आपका, तो हम 7 से 7:30 हमारी बिटिया जो है वो हमारी बहन बन जाती है और वो मुरली पढ़ती है, हम तीनों बैठते हैं और हम मुरली सुनते हैं। संडे को और थर्सडे को मैं जरूर ये, क्योंकि जो सेंटर है, सेंटर का वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो बहुत आपको मदद करता है। तो संडे को और थर्सडे को चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, वो मैं कभी भूलता नहीं जाना, मैं जरूर जाता हूं। और अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे सूक्ष्म वतन, परम धाम, इन सब चीजों का मैं आपको कुछ शब्द कहता हूं, वही शब्द आपके अगर मुरली में आता है तो वो आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको को रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो आप ये 7 दिन का कोर्स करते हैं, इसमें आप लोगों को एक एक स्टेप वाइज आपको सिखाया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। आज तक मैं जो मुरली समझता था, वो मुरली मैं यही समझता था कि ये कोई किशन कन्हैया है, वो एक काठ की मुरली बजाता है और उसमें से म्यूजिक निकलती है और म्यूजिक निकल के गोप गोपियां जो है वो झूमते हैं। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये हम क्यों झूम रहे हैं, क्यों आज मैंने ये संकल्प लिया कि मैं ये मुरली मुझे करना ही करना है। उस तरह से उस समय भी वो गोप गोपियां जो थे वो मुरली सुन के, हमने शास्त्रों में सुना है ना, वो मुरली सुन के इवन गाय भैंसों जो है वो भी आ जाते थे सुनने के लिए। तो ये उस मुरली का जो भाव है वो ये है कि पहले आपको उसके कुछ शब्द हैं वो समझना होगा, और समझने के बाद में आपको वो बिल्कुल एक लय की तौर पे हर एक चीज आपस में कनेक्टेड होगी, तो वो आपके फिर एकदम आपके उसमें बैठ जाएगा।
शुक्रिया भाई साहब। जैसे बहन बता रही थी, जैसे मैं अभी इनका बायोडाटा भी पढ़ रही हूँ, तो क्योंकि मैं मिलिट्री का बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे उनके कुछ उनके बातों को पढ़ना, जैसे भाई साहब का YSM है लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मुझे किसी ने गाइड किया। तो इसी रूप से क्योंकि आप आध्यात्मिक भाषा को रेगुलर अपने डेली लैंग्वेज में नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए शुरू में ये 7 डेज के कॉन्सेप्ट्स में ये भाषा आपको क्लियर हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब आप रेगुलर सेंटर पर जाकर ये मुरली सुनेंगे तो ये सहज हो जाएगा, तो फिर आपके लिए रेगुलर स्टडी भी ईजी हो जाएगा। हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर हरबीर जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप कई स्थानों पर, खास जम्मू और कश्मीर काफी समय रहे हैं, और वहां हमारे सेंटर्स भी उस समय कई बार ऑपरेशनल नहीं थे और पॉसिबल ही नहीं था कि आपको सेंटर पर जाना, तो फिर ये मेडिटेशन का अभ्यास आपने कायम कैसे रखा, ये स्टडी को आपने कायम कैसे रखा?
ओम शांति। मेरे कश्मीर में 2 टेन्योर रहे हैं। आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ अबाउट दी टेन्योर्स एंड देन आई विल कम टू द क्वेश्चन बाय सिस्टर। एक यूनिट थी हमारी, स्पेशल यूनिट इन कश्मीर, वो काफी खराब कंडीशन में थी और वो यूनिट डिसबैंडमेंट के नजदीक थी, और जरूरत थी उस यूनिट को दोबारा से, जरूरत थी उस यूनिट को दोबारा से खड़ा करने के लिए। तो जो हमारे आर्मी चीफ थे मेरे रेजिमेंट के, जनरल विक्रम, उन्होंने फिर ही न्यू कि यार ये कल हरबीर दैन ये एक बड़ा सीधा चलने वाला है जो भगवान के रास्ते पे चलता है, शायद ये इस यूनिट का कुछ ठीक कर पाएगा, नहीं तो वो यूनिट काफी खराब हो चुकी थी। उस यूनिट में मैं गया और वहां से फिर मैंने अपना मेडिटेशन रूम बनाया और लगातार मधुबन से बहन भाई वहां पर आते रहे। और जो ज्ञान के साथ आप चलते हैं, और जो हम तो फिर भी एक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, दीपा बहन है ये हर वक्त ज्ञान में रहते हैं, एक पवित्र वातावरण में रहते हैं, इनकी वाइब्रेशन की बहुत ताकत होती है, बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। तो वहां पर लगातार मेडिटेशन मेरे पास थे, बहन भाई मधुबन से और बीकेज आते रहे और उनके प्योर वाइब्रेशन से और एक बाबा के ज्ञान से, और जैसे रजनीश भाई बता रहे थे कि आप हर एक इंसान को जो आपके साथ काम करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, कॉपरेशन की वाइब्रेशन देते हो, वही यूनिट जो इतनी नीचे चली गई थी कि डिसबैंडमेंट के नजदीक थी, वो 2 साल के बाद इंडियन आर्मी की बेस्ट यूनिट का अवार्ड उसी चीफ ने दिया उस यूनिट को। फिर जो साउथ कश्मीर में था, अब यहां आने से पहले मैं पुलवामा सोफिया में हैंडल कर रहा था, शायद आपने ये काफी बार सुना होगा न्यूज में भी, और इस इलाके में हमने तकरीबन 95 टेररिस्ट को ऊपर भेजा। यहां पर भी मेरे रेजिडेंस में 2 मेडिटेशन रूम मैंने बनाए हुए थे, 2 मेडिटेशन रूम, एक मेरे बेडरूम के साथ पर्सनल मेडिटेशन, एक बार जहां जो भी भाई बहन यहां से लगातार यहां से जाते रहे, अशोक भाई मेरे पास आए, सती भाई आए, शिव भाई आए और बहुत सारे भाई बहन लगातार आते थे। और मैं इसलिए जैसे पहले कहा था, ये मेरा इसमें 1% भी मैं हिस्सा नहीं मानता हूं, कंट्रीब्यूशन जो काम हुआ वो सब जो प्योर सोल्स वहां पर आए उनकी वाइब्रेशन की ताकत और जो गॉड शिवा शिव बाबा उनकी जो ब्लेसिंग्स उनकी गाइडेंस, उसे ही हर चीज संभव हो पाई। लास्ट में जो पुलवामा का आपने एक सुना होगा, एक ऑपरेशन ऑन था मेरे सेक्टर का, उस टाइम मैं छुट्टी पर था, बट जैसे मेरे को पता चला ऑपरेशन ऑन है, हमारा एक ऑफिसर शहीद हो गया, उसमें 3 जवान शहीद हो गए, छुट्टी से मैं तुरंत वापस गया, ऑपरेशन तब चल ही रहा था, मैं ऑपरेशन साइट पे मैं गया तो एक टेररिस्ट बचा हुआ था और उसने अचानक से सामने आके हमारी पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया। मैं सिविल ड्रेस में ही था, मैंने कोई बुलेट प्रूफ पटका, बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ नहीं पहना था, बाकी जितनी भी टीम थी सभी ने पूरा जो ऑपरेशनल बुलेट प्रूफ पटका जैकेट से पहने हुए थे। 5 को उसमें गोली लगी, एक DIG को पेट में गोली लगी, वो अभी भी एम्स में अंडर ट्रीटमेंट है, एक सब इंस्पेक्टर की वहां डेथ हो गई, एक मेरा मेजर था उसकी दोनों टांगें पूरी कट गई नीचे से, और एक मेरा प्रोटेक्शन उसको भी काफी चोट आई, मेरे को सिर्फ एक यहां पर गोली लग के और पीछे निकल गई वो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बाबा का प्रोटेक्शन साथ है तो आपको किसी वर्ल्डली प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और उसको साथ लेके चलने के लिए जो ये परिवार है, बीके परिवार है, ये इसका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कितना भी मेडिटेशन करेंगे, योग लगाएंगे, वो एक बड़ा लिमिटेड उसकी पावर है, लेकिन एक बीके परिवार जब साथ चलता है तो पूरे परिवार साथ चलने से मिरेकल्स होते हैं। कल सुंदर ने बताया कि वो एक सिचुएशन ऐसी थी, उन्होंने फोन किया यहां पर कि थोड़ा मेडिटेशन करो मेरे लिए, कमांडर सिंह को बताया, तो ये जो बीके परिवार के जो इतने प्योर सोल्स हैं ये साथ चलते हैं तो हर रास्ता बहुत सहज हो जाता है, सफलता ही मिलती है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे आदरणीय कैप्टन रजनीश जी से कुछ पूछना चाहूंगी कि इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलते चलते कई बार जैसे सुंदर भाई ने भी बताया कि आपको जो फोर्सेस में, चाहे आपके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कई बार थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आपकी जीवन शैली में आपने वेजिटेरियनिज्म क्यों अडॉप्ट किया है, इस रोज आप मेडिटेशन क्यों करते हैं, या आपके स्वभाव में आप इतना टॉलरेंट कैसे हो गए हैं। तो कई बार आपको क्रिटिसिज्म जो आपको फेस होना पड़ता है, या सीनियर्स शायद उसके लिए एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसको आप कैसे फेस करते हैं? क्या ये आपको नहीं कहा जाता है कि आप टॉलरेंट इतने हो गए हैं तो कैसे आप अपनी ड्यूटी को एग्रेसिवली फुलफिल कर सकेंगे? तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको आप कैसे फेस करते हैं?
ये बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है जीवन का, और सुनने में भी आता है और एक ताजुब भी होता है कि अच्छा, आप पहले थोड़ा क्रोध किया, जोर दिया और काम होता था, अब आप प्यार और स्नेह से कैसे काम कराएंगे? तो मैंने जैसे पहले कहा कि पिता हमें सिखाते हैं लॉ एंड लव, अब वो कैसे संभव होता?
वो संभव इसी प्रकार होता कि जो बात है उसे फर्मली कहा जाएगा कि हमारे लिए ये लक्ष्य है, हमें इसे इतने समय के अंदर पूरा करना है। फिर आप क्योंकि लव प्यार करते हैं ना, तो स्वयं में भी बल भरते हैं और उनके अंदर भी बल भरते हैं टीम के अंदर, उनसे प्यार से बात करते हुए उन्हें पूरा वृत्तांत देते हुए कि देखिए समय की मांग ये है, हमें इसे इस प्रकार करना है। अच्छा, मेरी समझ ऐसे कहती है, अब आप भी अपनी राय दीजिए। तो मैंने टीम को अपने साथ मिला लिया, उनको उसका भागीदार बना दिया। और जब आपने किसी को अपना भागीदार बना दिया तो वो तो एक या दस कदम आगे बढ़ करके ही आपकी मदद करता है। और मेरा अनुभव ये रहा कि समय से पहले ही मैं उस लक्ष्य को पा लेता हूं। जैसे अभी जहां पे हूं मैं, उधर हमारे पास था कि भाई सरकार के कायदे कानून ऐसे हैं 3 साल से पहले वो काम हो नहीं सकता। तो सरकार के अंदर ही सरकार के कायदे आपको इतने तरीके दे देते हैं कि वो काम को आप जल्दी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ पढ़ रहा था, मेरी टीम कुछ पढ़ रही थी, तो वो आए, सर ये है, ये कायदे के हिसाब से हम इस काम को कर सकते हैं, वो भी लीगली सही है। और हमने ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो 3 साल में करने थे, आज की तारीख में 3 प्रोजेक्ट 1 साल में कर लिए हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा में बहुत महत्व रखते हैं। अब जहां तक रही बात कि आपको कोई कुछ कहता है, हां जी ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरे जो बॉस थे, उन्होंने जब मेरा पहला, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, मैं जीवन का ही अनुभव फैक्ट है, आप अपने जीवन प्रणाली में हैं और फौजी उसमें रहे, जीवन में बाहर भी रहते ही हैं, परंतु अपने आप वो शक्ति ऐसे आ जाती है जब आप अंदर से रस चखने लगते हैं तो बाहर का रस आप छोड़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको ये मालूम है कि शहद और चीनी में अंतर क्या है, कौन सा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है और कौन सा नुकसानकारी है, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे ही मैंने जब इस ज्ञान में उतरा और रोज जैसे मुरली पढ़ना, सुबह पढ़ना, तो क्योंकि आपको जब जो मेरा वर्किंग आवर था जहां पे पहली बार, तो 7:30 बजे तो आपका कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है। 7:30 मतलब आप 7 बजे उधर पहुंचेंगे, 7 बजे पहुंचना मतलब आप जितनी दूरी है उतने पहले आप घर से भी निकलेंगे, तो आपके मुरली का टाइम इंपैक्ट करेगा। परंतु पिता हमें इतना सहज कर देते हैं, हमारे जीवन प्रणाली ऐसी कर देते हैं कि आप सुबह उतने पहले ही उठते हैं, तो आपके पास बहुत समय है। आपने योग अभ्यास भी, याद का अभ्यास किया, फिर अपने मुरली का अध्ययन किया। अब जब मैं सेंटर अपने ऑफिस जाता था और कोई भी परिस्थिति आती थी, बॉस मुझे जोर से बोल रहे हैं और मैं उनको देखते हुए अंदर ही अंदर कहता था कि मैं भी पहले ऐसे ही था, इनको अभी पता नहीं है कि आप किसी और के वश होकर, मतलब क्रोध के वश होकर के इतना कुछ कह रहे हैं, ठीक है माफ किया, छोड़ दिया मैंने। वो अंदर से कहता था, बॉस को सीधा तो नहीं कह सकते ना, तो वो अंदर से कहता था। और जब बॉस सब बात कह लेते थे तो मैं कहता था, सर आपने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा। मेरा इतना कहना उनका आश्वासन में आ जाना, फिर टीम के साथ आप बात करोगे और काम हो जाएगा। तो कुछ दिन जब उन्होंने देखते रहे मुझे, मेरे को कहा कि छावड़ी यू हैव गॉन, आपने सब छोड़ना शुरू कर दिया, क्रोध भी छोड़ना धीरे धीरे शुरू कर दिया। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने पूरी तरह से क्रोध पे जीत पाई है, जब कभी कभी देह का भान में आ जाते हैं तेज तो क्रोध आता है, परंतु उसे उसी क्षण भर कंट्रोल भी कर लेते हैं और समझ भी जाते हैं कि कहां गलती कर रहे हैं और क्यों गलती हो रही है। तो जब बॉस ने मुझसे ही कहा तो मैं केवल बॉस के पास मुस्कुराया, बोला सर आप मेरे साथ एक बार चलिए, मैं नहीं कहता कि आप 7 दिन का कोर्स कीजिए और रोज मुरली पढ़िए, 1 दिन की क्लास कीजिए फिर आप मुझसे कहिएगा। बोले मेरे पास इस फालतू के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, और उनको वहीं छोड़ दिया। 1 साल बाद वो मुझसे कहते हैं मेरे को भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी ये करना है। तो मैंने कहा पक्का चलेंगे सर, और जैसे ही मैंने उनसे कहा पक्का चलेंगे सर, उसके बाद वो गए अपने परिवार से, उन्होंने बात की कि आज शाम को हम चलेंगे। परंतु जैसे कुछ और होता है ना, विधि का विधान तो कुछ और होता है, उनकी ट्रांसफर की अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गई और वो चले गए सप्ताह भर के अंदर दूसरी जगह पे। और फिर वो आगे उन्होंने कोर्स किया या नहीं किया वो मुझे पता नहीं, परंतु जरूर वो प्रेरणा लेके गए, तो मुझे पूरी शुभ भावना मेरी है कि उन्होंने किया होगा ये कोर्स।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ब्रिगेडियर हरबीर जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने अनुभव में बार बार परमात्मा से बातचीत करने के बाद, और वो भी युद्ध के स्थल में, उस समय गोलीबारी हो रही है, इतना प्रेशर है, तो ये परमात्मा से समीपता आपने कैसे प्राप्त की, जो ऐसे समय में भी आप ईश्वर से बातचीत करना अनुभव कर सकते हैं?
ओम शांति। जी, मेरा निजी अनुभव ये है, अगर आप परमात्मा को, मां को याद कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज करके और गॉड को लाइट फॉर्म अगर देख सकते हैं, जो आपको मेडिटेशन जब बाबा रूम बैठते हैं होता है, वो अगर आपने एक बार सीख लिया, मेरा पर्सनल अनुभव ये कि उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है। जो पीछे अभी साउथ कश्मीर में था, तो वो इलाका हर तकरीबन डेली न्यूज में था, मैं देखता हूँ, जैसे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो मेरे को यहाँ फीलिंग्स है, वो सेम फीलिंग्स मेरे को वहीं पर होती थी। मेरे को कभी एक सेकंड के लिए लगा नहीं मैं एक वॉर जोन में हूँ, कि इतने डिफिकल्ट एरिया में हूँ। तो बाबा को याद करना, ये एक आध घंटा सुबह आध घंटा शाम की बात नहीं, ये एक्चुअली हर सांस लेने के साथ आपने याद करना, ये वो वाली चीज है। और ये क्योंकि नेचुरली हम सोल पार्ट ऑफ दैट डिवाइन सुप्रीम सोल, इट कम्स नेचुरली वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। ये सोल कॉन्शियसनेस इज आर नेचुरल स्टेट, और जो बॉडी कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट अ नेचुरल स्टेट। हम उल्टा मेरे ख्याल से हम कर रहे हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस रिमेम्बरिंग द गॉड इन लाइट फॉर्म दैट कम्स नेचुरली टू ईच वन ऑफ अस। थैंक यू। ओम शांति।
सोल कॉन्शियसनेस का आपने अभ्यास किया, जिससे परमात्मा से समीपता हुई। मैं आदरणीय सुंदर भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना अनुभव शेयर करें, कि परमात्मा से जो आपने कहा आपको मैसेजेस मिलते हैं, माना हम बातचीत करते हैं लेकिन परमात्मा हमसे बातचीत करके हमें रिस्पॉन्ड करे, ये समीपता आपने कैसे बनाई ईश्वर से?
देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको बड़ा अचंभा होगा जब मैं ये स्टेटमेंट दूं कि आप जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आप परमात्मा को तो याद करते हैं, परमात्मा भी आपको याद करता है, और वो आपको कोई डायरेक्ट आपके सामने कोई आठ हाथ वाला शेर में बैठा हुआ कोई आपके सामने प्रकट नहीं होगा, कोई गधा वधा लेके कोई प्रकट नहीं होगा। आपको ये फील होगा कि किस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, या तो एक संकल्प उठेगा कि ये करना है, या तो जब आप मुरली पढ़ रहे हैं उस मुरली में आपको वो आंसर मिल जाएगा, तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, ये मैं तो चाह रहा था कि ये पॉइंट मेरे सामने आए और ये पॉइंट मेरे आ गया। और दूसरा चीज ये है कि जब मैं परमात्मा को, आई शुड नॉट बी गॉड फियरिंग, पहले हम गॉड फियरिंग थे, अब हम गॉड लविंग है। पहले मैं डरता था कि मैं अगर ये ना करूं तो शायद ये हो जाएगा। अब परमात्मा कहते हैं कोई आपका टाइम टेबल नहीं है, आप जब चाहो मुझे याद करो। तो हम ऑफिस में अपने टेबल में, सबने देखा होगा, हम ग्लास का वो लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, उसमें आप परमात्मा का फोटो रखते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को डांट भी मारना है, एज अ कमांडिंग ऑफिसर अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी को डांट नहीं मारा तो मैं झूठ बोल रहा हूं। तो लेकिन अगर मैं डांट मार रहा हूं किसी को, तो मैं क्या उस व्यक्ति को डांट मार रहा हूं या मैं उसके एक्ट को डांट मार रहा हूं? तो मैं ये देखता हूं कि मैं उसके एक्ट को डांट मार रहा हूं, ना कि मैं उस व्यक्ति के प्रति कुछ भावना प्रकट कर रहा हूं जिससे कि उसके और मेरे बीच में कुछ दूरियां हो जाए। तो जब वो व्यक्ति उस मेरे ऑफिस से अगर जाता है, तो बाद में वो ये रियलाइज करता है कि मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे कार्य के वजह से, जो मैंने गलत काम किया उसकी वजह से मुझे डांट पड़ी। तो वो मैंने देखा कि आज भी मुझे फोन आते हैं, आज भी सब कैसे हैं, क्या है। तो वो जो है, आपको वो परमात्मा ही ज्ञान देता है। दूसरा चीज ये है कि जब आप इस ज्ञान में आते हैं, जैसे भाई ने कहा कि ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आपको रियलाइज हो जाता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो आपको रियलाइज हो जाता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज यह है कि अब डर क्या है, अब ये डर ये है कि मैं अगर कोई गलत कार्य करूं तो मैं किसको गलत साबित कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को साबित कर रहा हूं? क्या मैं अपने परमात्मा को गलत साबित कर रहा हूं? क्या मुझे ये ज्ञान मिला, मैं इसको गलत साबित कर रहा हूं? तो आप ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आपने में देखेंगे कि आपके द्वारा किसी चीज का अनादर होगा तो आप अपने आप बदली हो जाएंगे। ओम शांति।
ये जो बहन जी का सवाल था, परमात्मा कैसे बात करता है, इसके पास मेरा स्पष्ट एक अच्छा चीज है जो मैं फर्स्ट टाइम पब्लिकली शेयर कर रहा हूं, शायद मैंने आज तक किसी के साथ चीज शेयर नहीं किया। ये एक फोर्सेस में एक एग्जाम होता है, कंपिटेटिव एग्जाम्स, स्टाफ कॉलेज, जो आपने कुछ एक ने सुना होगा, और ये आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और इसमें 20% ऑफिसर ही पास कर पाते हैं। वैकेंसी रखी गई है कि 100 ऑफिसर अपीयर करेंगे, 20 क्वालिफाई करेंगे। इसमें तकरीबन 2 साल तक लोग तैयारी करते हैं, एक साल तो कम से कम तैयारी करते हैं। तो मेरे पास टाइम तकरीबन 2 महीने का था, मैंने इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, और आफ्टर अराउंड 45 डेज मेरे को लगा ये बहुत मुश्किल है, आई वॉज कमिंग प्रेशर, क्योंकि आप एक साल जो पढ़ाई है आप 2 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं। आई केम अंडर प्रेशर एंड आई वॉज बकलिंग डाउन अंडर द प्रेशर। मैंने बुक्स सारी बंद करके एक तरफ रख दिया। देन आई थॉट कि सिंस आई एम आउट फ्रॉम दी होम, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मेडिटेशन। मैं सारा दिन मेडिटेशन में रहना स्टार्ट कर दिया, बुक्स मैंने बॉक्स बंद कर दिया। अराउंड 20th of August मैंने स्टार्ट किया था, और 1st September से एग्जाम्स थे। अराउंड 30th August मैं जब मेडिटेशन बैठा हूं, मेरे को एक साफ टचिंग आती है कि चाइल्ड यू विल पास दिस एग्जाम। आई थॉट मे बी मेरे माइंड में ये थॉट्स बार बार घूम रहा है, तो इसलिए इट कुड बी माई ऑन थॉट, बट आई कुड फील नो आई एम लाइट एंड कनेक्टेड टू दैट लाइट, इट कुडंट बी माई थॉट बिकॉज आई वॉज इन दैट प्योर लाइट फॉर्म। मैंने उसको लिख दिया, आई थॉट यू कैनॉट शेयर दिस थिंग एट दैट स्टेज बिकॉज अभी एग्जाम भी आना है, फिर रिजल्ट भी आना है, नहीं हुए तो फिर शिव बाबा बोलेंगे शिव बाबा का टचिंग थी ये कैसे फेल होगी। आई जस्ट रोट दैट थिंग एग्जैक्टली इन अ पीस ऑफ पेपर, एट दिस टाइम एट दिस प्लेस आई हैड दिस टचिंग दैट विल पास दिस एग्जाम। मैंने उसको लिख के अपने पर्स में डाल दिया। अनदर टचिंग केम कि नाउ डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ, जस्ट हैव फेथ मी, डोंट स्टार्ट स्टडिंग नाउ, यू हैव फेथ मी ऑन मी एंड बुक्स को बॉक्स में रहने दो। मैंने बुक्स को बॉक्स में रहने दिया, इट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जब मैं एग्जाम में जाता तो मैं 10 मिनट तक मेडिटेशन में बैठता, फिर 10 मिनट सारे क्वेश्चन पढ़ता, देन आई वुड स्टार्ट राइटिंग। एंड द 5 एग्जाम्स होते, 5वां एग्जाम मैंने टाइम से 20 मिनट पहले खत्म किए, और रिविजन करके मैं 10 मिनट पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाता था। ये ऐसा कंपिटेटिव एग्जाम है जिसमें काफी इसको पूरा ही नहीं कर पाता, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं दे विल एग्री विद मी। एंड वी वर 5 ऑफ अस हु हैड गॉन फ्रॉम वन प्लेस इन दैट एग्जाम, ऑल अदर 4 वर बेटर प्रिपेयर्ड देन मी, दे हैड डन लॉट मोर स्टडीज देन मी, आई पास्ड, नन ऑफ देम कुड पास। बाबा, सो दिस वॉज अ लाइव एग्जाम्पल हाउ गॉड स्पीक्स टू यू, एंड ही इवन टोल्ड मी दैट डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ नाउ, आई एम टेलिंग यू दिस, यू लेट मी हैंडल दिस। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे आदरणीय रजनीश भाई से भी ऐसा कोई अनुभव सुनना चाहेंगे कि परमात्मा आपका करण करावन हार बनकर कैसे आपसे वहां ड्यूटी पर प्रेशर में आपसे कार्य कराता है।
करण करावन हार, इस स्मृति में अगर हम रहते हैं कि कराने वाला मुझ द्वारा करा रहा है, इसको बहुत ही सरल तरीके से अगर मैं डालूं, और एक ऐसा जो एक्सपीरियंस जो हम सब किसी ना किसी रूप में उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर आता हूं। जब आप एज ए कैंडिडेट जाते हैं तो आप पे एक अलग प्रेशर होता है, एक आप एसेसर हैं एक अलग प्रेशर होता है। तो जब मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर था, अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको वो बच्चा सेलेक्ट करना जो कल का अधिकारी बनेगा, तो एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके ऊपर बहुत सारे सोच चलते हैं कि मेरा मुझे निष्पक्ष होना है, वो कुछ भी जो कहेगा उसके प्रभाव में भी नहीं आना, ना ही मुझे अपना निजी प्रभाव उस पर डालना है। ऐसे स्थिति बनाए रखना, एक थोड़ा ऐसी असमंजस स्थिति को संभाल के रखना कठिन होता है, क्योंकि होता क्या जीवन के अंदर, अच्छा उसने एक बात कही, आप उसकी बात के ऊपर 2 बात बना लोगे। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि सर मैं तो बहुत ही सादगी का जीवन जीता हूं, अब इस एक छोटे वाक्य के ऊपर आप कई बातें बना लोगे। सादगी मतलब ये तो एकदम छोटे मोटे कपड़े पहनता होगा, छोटी सोच होगी। दूसरी ये होगी कि निसादगी मतलब ये सिंपल लाइफ लेता है, नॉनवेज नहीं खाता, दारू नहीं पीता, जो बोलता है वही सामने है। तीसरी बात ये होगी सादगी की कि बहुत ही प्रिंसिपल के साथ रहता है। तो जैसा आपका अनुभव है वो बीच में आने लगता है,
अब ऐसी स्थिति में आप कैसे अलग रहेंगे? तो पिता हमें सिखाते हैं कि कैसी भी स्थिति में रहते हुए आप अपने अंदर समेटे हुए साक्षी होकर देखें। तो आप जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर बन के बैठते हैं या कोई भी एसएसआर, उससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग भी ली हुई होती है, आपको ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद आपको सीट पे बिठाया जाता है, और जब आप उस सीट पे बैठते हैं और आपकी जिम्मेवारी की कल आपके देश के, क्योंकि आपसे बागडोर तो उन्हीं को जानी है ना, और अगर आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना तो कल आप किसके हाथ में बागडोर सौंप देंगे। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी और प्रेशर बना रहता था, तो एक ही संकल्प होता था कि जो मेरे सामने आ रहा है वो जो जैसे बात मुझे कहेगा वो मुझे वैसे ही छुएगी। तो अगर किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं बहुत सिंपल हूं और मैं बहुत ही सादगी का जीवन जीता हूं, तो मैं उसके प्रोफाइल को देखते हुए, उसको समझते हुए, वो बात वैसे ही छूती थी कि ये किस प्रकार की सादगी का जीवन जीता है। और अब इसी में एक एक्सपीरियंस जोड़ता हूं मैं, जैसे अभी जब पिता से बातें करने की होती हैं बातें, उसमें मैं बीच बीच में पिता से बातें करता रहता था। अच्छा पिता, आपका ही बच्चा आके सामने बैठा हुआ है, तो ये जो ये कह रहा है इसमें सत्य है? क्योंकि आप अपने आप को क्लीन क्लियर रखते हैं, कहीं पे भी कोई मिक्सिंग नहीं है अंदर कि ये ऐसे बैकग्राउंड से आया है या वैसा है, ये वो है, कोई मिक्सिंग नहीं रहती उसके अंदर। ये भी एक सिंपल, आपके सामने व्यक्तित्व बैठा हुआ है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसको आपको भांपना है। तो मैं एक अपने निजी एक्सपीरियंस के अंदर जाता हूं जिसमें ये बात है, जब हम ज्ञान के अंदर उतरे थे और उस समय मेरी बिटिया थी 3 साल की। मतलब कितना सहज है, मैं ये आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि आपको केवल क्लीन और क्लियर रहना है। क्लीन और क्लियर मतलब जो मर्यादाएं मुझे दी गई हैं स्वयं परमात्मा द्वारा, मैं उन्हें फॉलो करता रहूं, उसमें मैं अपने इफ्ट्स एंड बट्स को नहीं मिलाऊं, क्यों क्या नहीं मिलाऊं, जो दिख रहा है वैसे ही लें। जैसे अगर घर के अंदर श्रीमती कहे कि आज तो मैं आपके लिए ना मनपसंद का आपका भोजन बनाऊंगी, तो दिमाग में क्या चलता है? आज तो जेब खाली होनी है लगता है, बटुआ छुपा के रखना पड़ेगा फिर तो, ऐसी बातें आती है ना। परंतु वो आपसे अपने स्नेहवश कह रही है कि आज मेरा मन कर रहा है ये आपके लिए बनाने का। तो ऐसी मैं घर के अंदर एक अपनी बातें शेयर कर रहा था अपनी उलझन को कि इसका निर्णय क्या लिया जाए। तो मेरी बिटिया 3 साल की उस समय बैठे हमारे साथ टेबल पे, एक ही हमारा है परिवार कि हम सब एक साथ बैठेंगे और जो परिवार की बात है वो शेयर करेंगे आपस में। तो जब शेयर कर रहे थे तो बिटिया का मन किया, वो बोली अच्छा पिताजी मैं आती हूं पानी पी के आती हूं। वो पानी पीने के लिए गई और फिर आके कहती है पापा बाबा ने मुझसे ये कहा। मैंने क्या कहा बाबा ने आपसे? तो उन्होंने मेरे को बताया वो वृत्तांत कि इसका निर्णय ये है। तो मैंने कहा आपने ये कैसे किया? मतलब कुछ नहीं, मैंने उनको बोला बाबा ये बात है अब बताओ आप। तो मतलब हमें इतने भोले होने की जरूरत है कि मेरे पिता जब उसे मान लेंगे ना पिता है तो पिता आपको गाइड करेगा ही ना। तो जैसी पिता ये बात है उसके समक्ष रख दो, फिर वो किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के रूप में आपके सामने आके वो ऐसी कोई बात कहेगा, उस बात में से बात निकल आएगी आपके सवाल की, या जो नित्य पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में से कोई बात निकल आएगी, या आप शांत बैठे हुए हैं तो एक अपने आप में विचार आ जाएगा। इसको कहते हैं उसका जवाब आना। ओम शांति।
बहुत सारे अच्छे अनुभव हमने सुने, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आपके मन में भी कोई और प्रश्न रहा हो, कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी के आपके डेली एक्टिविटी में। हाँ जी
सपनों के द्वारा जो है रात भर जो है कुछ कुछ वृतांत या कुछ कुछ घटनाएं जो है वो दिमाग में घूमती है, फिर हम सुबह उसको उठ करके सोचते रहते हैं कि मतलब क्यों जो है ये मतलब रात में जो रिमाइंड हुआ हमारे, क्या मतलब उसका कारण है या उसका क्या वो कहना चाह रहे हैं हमारे से, थोड़ा वो उलझन सी बनी रहती है वो।
ओम शांति। ट्राई आंसर दिस इन ब्रीफ। मैंने यहीं पे ज्ञान में सीखा था, इट इज नॉट माई कॉन्सेप्ट, आई लर्न ज्ञान ओनली, दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ थॉट्स। वन इज पॉजिटिव थॉट, व्हेन यू आर थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, यू आर मेडिटेटिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड, लव, अफेक्शन, दीज आर पॉजिटिव थॉट्स। सेकेंड टाइप ऑफ थॉट इज नेसेसरी थॉट, लाइक आप यहाँ पर आए, आप जाओगे, आपने रिजर्वेशन करना है, फिर कौन सी गाड़ी पकड़नी है, कब पहुंचोगे, घर पर फोन करोगे, अब हम उस गाड़ी से आएंगे, पहुंच जाना, दीज आर नेसेसरी थॉट्स। इसके अलावा एक है वेस्ट थॉट्स। आप जो बात करें वो वेस्ट थॉट्स की कैटेगरी में आता है कि कोई घटना हुई, आप उसके बारे में ऐसे सोच रहे हो बस, उसका आउटकम आपको पता है कुछ नहीं है, ना उससे आपको कुछ मिलना है, बट दैट विल ड्रेन आउट योर एनर्जी। एंड लास्ट थॉट होता है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट, यू ऑल नो आई डोंट विल नॉट डेवलप नेगेटिव थॉट। तो कॉन्शियसली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड विच द मेडिटेशन विल एम्पावर यू टू कीप योर फोकस ओनली ऑन टू थॉट्स, फर्स्ट टू पॉजिटिव एंड नेसेसरी। द वेस्ट थॉट इज वॉट कीप गोइंग इन अ माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम। कमांडर जी बैठे हैं मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, काफी ज्ञान वाले हैं, बहन जी भी मेरे से बहुत क्वालिफाइड हैं, तो आई टेकन दिस लिबर्टी ऑफ आंसरिंग दिस, अदरवाइज दे आर द राइट पीपल टू स्पीक ऑन दिस। ओम शांति।
तो ये जो सपने आते हैं वो क्यों, हमारे थॉट्स मतलब हम नहीं चाहते हैं वो नहीं आए, हमारा हम सोते रहते हैं फिर भी वो क्यों आते हैं?
ये लाइक मैं खुद इनमें से वर्क प्लेस पे हम गुजरे, ये जब आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होता है, जब मेडिटेशन से आपका माइंड स्ट्रांग होगा वही थॉट आपके पास आएगा जो आप लाना चाहते हो। दैट पावर इज देयर इन ईच वन ऑफ अस। नॉट इवन वन थॉट कैन कम टू अस विच वी डोंट वॉन्ट, दैट इज द पावर वी हैव। बट वेन अ सोल इज वीक,
कई बार हम रात में खुद हम नहीं चाहते कि हम डरे या कोई हमें डरावना सपना आए, फिर भी वो डरावना सपना आ जाता है, डर जाते हैं हम कुछ ऐसा मतलब
इन सब का वही बहन जी जैसे मैं बता, जब मेडिटेशन आप स्टार्ट करेंगे, वेन द सोल स्टार्ट गेटिंग चार्ज विद द लव ऑफ द सुप्रीम, वेन माइंड स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रांग विद मेडिटेशन, दैट इज द ओनली वे। देर इज नो मेडिसिन दैट इट कैन बी गिवन एंड देन यू नो देर इज नो वन सेंटेंस विच विल रिमूव दिस, दिस विल कम विद प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन।
क्योंकि मैं सपनों से ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को रात में काफी सपने आते हैं और डरावने ज्यादा आते हैं, इसलिए
यू कैन मीट कमांडर सो ही इज अ स्लीप एक्सपर्ट, प्रॉब्ली ही विल बी एबल टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, और भाई बहन जी विल बी एबल टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस।
भाई साहब भी बताएंगे रजनीश भाई, मैंने सारे दिन कारोबार में आप इतना व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी बातें, तो सोने के पहले आप कैसे मेडिटेशन करते
हैं? बहन इसका बहुत ही, भाई जी ने जो बताई वो बातें बहुत ही मूल्य रखती हैं, और पिता इसे और भी सरल करके हमारे समक्ष रखते हैं। पिता कहते हैं जैसे आपका अगर मटका भरा हुआ है पानी का, अगर गर्म पानी भरा है तो जब तक उसकी गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो वो महसूस होती रहेगी ना गर्मी, तो जब तक इधर भरा हुआ है तो वो महसूस होती रहेगी ना। तो पिता ने इसके लिए एक बहुत सरल तरीका दिया हुआ है, मतलब परमपिता परमात्मा, जब मैं पिता कह रहा हूं तो परमपिता परमात्मा शिव भगवान हुआ चाहिए। उनका एक सिंपल है कि आप जब सोने से पहले मेरे साथ बैठो, बस पिता के साथ बैठते हैं, उनको पूरे दिन की कहानी सुना देते हैं। जैसे अगर जो जीवन का साथी होता है घर पूरी दुनिया के सुन के आ गए और चलती बस उसके ऊपर ही है, तो घर आते ही बस उनको कह दिया खाली हो गए ना, तो इधर वो हमारा सबसे अच्छी सजनी है, वो सबसे अच्छा साजन है, वो उसको बस बुलाओ अपने सामने कि अब मैं सोने जा रहा हूं आ जाओ मेरी पूरी बात सुन लो, और उसको पूरे दिन की बात सुना दो। आप तो खाली हो गए, अब मटका जब खाली हो गया तो ठंडा होने में कितना टाइम लेगा, तो वही हाल होगा, और आप खाली होने के बाद आपको कोई व्यर्थ के सपने नहीं आएंगे।
शुक्रिया भ्राता हरबीर भाई और रजनीश भाई जी। और कोई प्रश्न आपको पूछना हो? हाँ जी।
ओम शांति। ओम शांति। मैं भी इस ज्ञान में 4 महीने पहले जुड़ी हूं, तो मैं थोड़ा अनुभव अपना शेयर करना चाहती हूं उसके साथ में। एक्चुअली 13 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लाइफ में आती गई, बच्चों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आई और मुझे उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो ऐसे 4 महीने पहले मैं यूट्यूब पे शिवानी सिस्टर्स की जो मैंने स्पीच सुनी, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कौन है ये लेडीज, कैसे मिलूं मैं इसको, मैं बता नहीं सकती, 7 डेज की जो एकदम से कैसे मतलब मेरी लाइफ से बिल्कुल वो मैच कर गई जो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि ये कहाँ मिल सकती है, तो मैं चंडीगढ़ में सीआरपीएफ में वर्किंग हूँ, तो मेरे को वहां पे नंबर मिला 33 में जो इनका हेड है, तो सिस्टर ने मेरे को बताया कि आप ऐसे से पहलाना में जो पास में सेंटर था, मैं उनके पास में गई। तो आप यकीन मानो कि 4 महीने में मेरी लाइफ, जो मैं इतनी डिप्रेशन का शिकार थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, बच्चों को लेके तो अब मैं हवा में, मुझे समझ नहीं आता मैं टेंशन कहाँ भाग गई, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही कि मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। और जब मैं रोती हूँ तो परमात्मा से आ जाती, बच्चा रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो सच में वो परमात्मा की 4 मंथ में जब इतनी पावर मुझे मिली है, तो आप लोग तो इतने टाइम से हो, तो इमेजिन, मतलब मैं तो 100% विश्वास करती हूँ कि परमात्मा क्या हमें देता है। जो 4 मंथ में मुझे परमात्मा ने दिया है, मेरे कल 45 ईयर्स एज में मैंने कहीं भी प्राप्त नहीं किया है, इतना अच्छा अनुभव किया है। तो मैं तो बोलती हूँ जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, सब प्लीज परमात्मा के साथ जुड़ जाइए और अपनी लाइफ को बदल दीजिए। सब कुछ में हमारा अंधकार सब चला जाएगा, यहाँ पे हमारी थॉट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। सबसे मेन है कि हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। हमारे सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते, वो हमें यहाँ मिल जाते हैं आकर के। इतना जो मैं डिप्लीट हो रखी थी, दिमाग कहीं काम ही नहीं करता था, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आज परमात्मा ने मुझे इतनी पावर दी है ना कि आई कांट एक्सप्लेन। आई एम सो हैप्पी, गॉड ने मुझे सब कुछ दे दिया और रास्ता भी मुझे दिखाया है। तो टाइम आएगा तो सब अच्छे से हो जाएगा। आई थैंक्स टू बीके सिस्टर, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। इतना अच्छा परमात्मा ज्ञानी ने हमें दिया है और एक नया रास्ता दिया है, तो थैंक यू वेरी।
हाँ जी, एक लास्ट प्रश्न हम लेंगे, फिर हम आज का इस सेशन समाप्त करेंगे। आपका प्रश्न।
सज्जन सर, मैं ऐसा ही कुलदीप एनडीआरएफ से। जैसे कि हमने सर ने बताया कि क्रोध नहीं करना है, जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, सर प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो क्रोध तो आता है सर थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई हमारे इंडिया में हायरार्की सिस्टम जो है सर, सीनियर ऑफिसर ने बोला हमें ना तो बोलना ही नहीं है, चाहे वो काम 5 दिन में हो, हमें जैसे कल गिरीश सर ने बताया कि वो हमें हाँ ही बोलना है, तो सर हाँ बोलने के बाद भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता। घर से हमारे बहुत से लड़के आते हैं बीवी से या कोई प्रॉब्लम है और वो सारे गुस्सा आपके ऊपर उतारते हैं, तो उसमें कैसे ओवरकम करें? गुस्सा लाजमी है सर आना, अभी दूसरे बॉस ने काम दिया, फिर दूसरे बॉस ने काम दिया, उनको भी काम चाहिए, उनको भी वही काम से टाइम पे चाहिए, उसमें कैसे ओवरकम करें सर, वो मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे।
आपका जो प्रश्न है वो है एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आप कुछ चाह रहे हो और वो चाहना है कि या तो वो शाबाशी हो या तो आपने कोई ऐसा एक्ट किया हो जिससे कि आपका साइटेशन जाए, आपको कुछ मिले, लेकिन आप देख रहे हो कि आपकी जगह किसी और को ये मिल गया। मैं जितने भी मेरे पास में आज के तारीख में अवार्ड हैं, वो सारे के सारे अवार्ड मेरे पास में मेरे पहले के, मतलब मेरे जन्म जो हम कहते हैं आत्मिक जन्म, मेरे ज्ञान में आने से पहले के हैं। मेरे पास में 4 अवार्ड्स हैं, वो चारों उसके पहले के हैं। और ज्ञान में आने के बाद मैं अगर मैं ये कहूं कि परमात्मा मेरा साथी है, भगवान मेरे साथ है, तो मुझे तो और प्राप्ति होनी चाहिए थी ना। मुझे शौर्य चक्र के बाद में तो कीर्ति चक्र मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं तो अभी परमात्मा से जुड़ गया हूं। लेकिन मुझे किस चीज की प्राप्ति चाहिए? मुझे क्या सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है? मैं कई सारे ऐसे वाक्या बताता हूं, जो एज अ कमांडिंग ऑफिसर मुझे हायर हेडक्वार्टर से मैसेज मिला कि आप अपना खुद का साइटेशन भेजो, लेकिन मैंने अपने जो मेरे जूनियर्स हैं मैंने उनको आगे किया। मैंने उनको कहा नहीं, इन्होंने किया और इसको आगे करो। तो जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो मैं आज के तारीख में, उस समय जब मुझे अवार्ड मिलता था मुझे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन आज के तारीख में मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ एक क्षण के लिए आपको खुश करने के लिए एक ऐसी प्राप्ति है जो कि ये कभी भी खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस समय, अभी कल ही जो है अपने जेटली साहब जो हैं वो निकल लिए, इससे पहले सुषमा स्वराज थी, इससे पहले कई सारे थे, वो क्या लेके गए हैं? कुछ लेके नहीं गए हैं। वो जो आप इस ज्ञान में प्राप्ति करोगे उसके बाद में आपको लगेगा ही नहीं कोई आपको अप्रिशिएट करे। आप खुद अपने आप को, गिरीश भाई ने भी कल आपको यही कहा कि आप अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करें। डॉक्टर मसंग जो आप लोगों को यहां पर, जिन्होंने यहां पर बैठ के जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आपको क्या कहा कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे तो आपको और किसी के अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको किसी को भी, मेरे को ये रिस्पेक्ट दे और मेरी ये रिस्पेक्ट हो, वो आपके बिल्कुल मन से निकल जाएगा। तो मेन चीज है खुद सेटिस्फाई होके अपने आप को सेटिस्फाई करना, ना कि अगर मैं आज के तारीख में सेटिस्फाइड हूं तो मेरे सेटिस्फेक्शन का कारण मैं खुद हूं, ना कि सामने वाला मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, ना ही सामने वाला मुझे क्रोधित कर सकता है। मैं क्रोध क्यों पैदा कर रहा हूं, क्योंकि मैं अंदर से क्रोधित हूं। मैं सेटिस्फाई क्यों हूं, क्योंकि मैं अंदर से मैं सेटिस्फाई हूं। मुझे कोई सेटिस्फाई या मुझे कोई क्रोधित नहीं कर सकता है, वो आप इस ज्ञान में सुनेंगे।
थैंक यू सर।
ये और भी काफी भाई बहनों के जो इस टाइप के सवाल छोड़ेंगे, उसका एक ही जवाब है कि आप जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव अपने आप आएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस ज्ञान इज कि इट इज अ सेल्फ जर्नी विद इन। आपको हर चीज का जवाब खुद से मिलेगा। मेडिटेशन बैठे परमात्मा जो हम मैंने बताया बातें करते, परमात्मा रजनीश भाई ने बताया, बहन जी ने बताया, वो परमात्मा आपसे ही बातें करेंगे, आपको हर समस्या का समाधान अपने आप ही मिलेगा। ओम शांति।
हाँ जी, एक मिनट आप भी बताएंगे इस पर, तो फिर हम।
भाई का सवाल था कि क्रोध आता है और वो स्वाभाविक है, क्रोध तो आएगा, उसको रोका कैसे जाए। तो इधर भी परमात्मा ने हमें बहुत छोटी युक्ति दी है। देखिए, क्रोध आएगा क्योंकि आप किस स्थिति में हैं, आप एक अलग प्रेशर में हैं कि मैं इस ड्यूटी पे हूं, मुझे ये पार्ट निभाना है और अच्छे से करना है, तो क्रोध आएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि अभी मेरे अंदर अपनी शक्ति नहीं है। तो इसके लिए पिता ने मुझे एक बोध दिया। ऐसे होती है सिचुएशन कि आपका बॉस आपसे कुछ कह रहा है, फिर टीम भी आपको कुछ कह रही है, और बॉस का बॉस ने आपको अलग से कुछ और कहा है, तो आपकी त्रिकोणी बनी हुई है। अब उस त्रिकोणी में आप हलचल में आए हुए हैं, तो वो क्रोध नहीं है, आप हलचल में आए हुए हैं एक्चुअली, जिसको हमने उसे क्रोध से नापा है। तो इसके लिए पिता ने एक बहुत सरल युक्ति दी है, और जिसको हम अपने परिवार में, ईश्वरी परिवार में करते भी हैं, और उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब जब ट्रैफिक के लिए रेड लाइट होती है तो क्या होता है, रुक जाते हैं ना। तो जब रेड मतलब बहुत गर्म है इधर, हम भी रेड हो गए ना, तो हम रुक जाते हैं अपने अंदर और एक सेकंड के लिए सोचते हैं मैं किसकी मैं कौन और मैं किसकी संतान। तो मैं किस कौन हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। तो मैं जब सर्वशक्तिवान की संतान हूं, तो क्या मैं किस प्रकार का बच्चा बन गया फिर, मैं भी तो शक्तिशाली हो गया ना, पावर हाउस से मैं जुड़ गया, तो पावर मेरे पास आया ना। तो जो वो आप एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए या पांच मिनट के लिए, शुरू में हो सकता है आपको 15 मिनट लगे, आप उधर तो यस बोलिए ही बोलिए, क्योंकि आप अपने सुपीरियर को नो तो नहीं बोल सकते। आपको लग रहा है कि वो गलत भी कह रहे हैं, आपकी समझ से वो गलत कह रहे हैं, तो आपको उस समय आप यस कहिए, आप वापिस आइए और आराम से बैठिए, अपने आप में पहले सोचिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको रिएक्ट कर रहा हूं, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो मुझे उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, मेरे सबॉर्डिनेट ने ये कहा, ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है। अब इसको आप देखिए और उससे याद कीजिए कि मैं एक सर्वशक्तिवान की संतान हूं, परखने की शक्ति मेरे पास है, निर्णय लेने की शक्ति मेरे पास है। अब आप जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप सही उस पर आएंगे, और धीरे धीरे आपका क्रोध होना खत्म हो जाएगा। एक समझ उसके साथ और जोड़नी होगी कि मैंने तो केवल इतना ही देखा ना, जो मेरे सुपीरियर कह रहे हैं उनके पास तो पिक्चर और बड़ी है, वो अपनी समझ से मुझे सही कह रहे हैं, मैं अपनी समझ में सही हूं पर वो अपनी समझ से सही कह रहे हैं। अब मैं वर्दी में हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, जो हुक्म मिला उसे मुझे बजाना है और अच्छे से बजाना है। तो उस हिसाब से जब आप करेंगे ना, तो आप अपने क्रोध पे भी जीत पाएंगे और अच्छा ही आप कर पाएंगे। और एक सवाल मेरे अंदर से आया था जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। हम जब कह रहे थे ना कि पिता से बातें करना, ये करना, आप सबको लग रहा होगा कि पिता से कैसे बातें करनी है, आप मेरे से जैसे बात कर रहे थे, आपका बच्चा आपसे कैसे बात करता है, बस इतने कहना, हे परमात्मा आओ मेरे सामने, मेरी बात सुनो। अब ये मत देखना वो आया या नहीं आया, बस कहना शुरू कर देना, जो कहना है कहना शुरू कर देना। जी हाँ,
परमात्मा का ही जो है।
जी हाँ, पिता तो बच्चे को छूता ही, और इस पे दीदी आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सारे ऐसे अनुभव सुनते ही रहेंगे। आज के हम पैनलिस्ट को बहुत प्यार से, कर्तन ध्वनि से इनका धन्यवाद करेंगे। आप तीनों ही आपके रिस्पेक्टिव मिलिट्री में तो आप विजयी रतन है, लेकिन हमारे परमात्मा के भी आप तीनों नूरे रतन है। आपके बहुत सुंदर अनुभव हैं, और हम शुभकामनाएं रखते हैं कि आपको ऐसे अनुभव हर कदम पर होते रहें, ताकि अब हम सबके लिए प्रेरणा के सूत्र रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक मिनट परमात्मा को याद करके ये समाप्त करेंगे।